नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेशगोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च वो कन्या जो आधी रात के समय दिखाया वसुदेव तुमको वो जसोदा की कन्या थी नारद जी का था जसोदाया सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव च और जसोदा के पास जो कृष्ण नामक लड़का है वो देवकी का है ये कौन से बता रहे चुगलखोरी कर रहे नारद जी विष्णुता यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वै याभ्याम् ते पुरुषाहतः निशम्य तद्भोजपतिः कोपात् प्रचलितेन्द्रियः निशातम् असीमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमयैः पाशैः बबन्ध सहभार्जया प्रतीयाते तु देवर्षौ कंस आभास्य केशिनम् प्रेषयामास हन्येताम् भवता राम केशव केशी को भेजा जाकर तुम्हारे द्वारा राम और केशव का वध हो जाना चाहिए। केशी जब चला गया तब उस दिन और लोगों से बात कर रहा ततो मुष्टिक चारुण शल तो शल का अधिकान अमात्यान हस्तिपांश्चैव समाहूयाः भोजराट भो भो निशम्यतामेतद् वीरचारुण मुष्टिकौ। पहलवानों से कह रहा है मंत्रियों से भो भो निशम्यतामेतद् वीर चारुण मुष्टिकौ हे वीर हे वीर चारुण हे वीर मुष्टिक दोनों में वीर लगा हुआ है। उनसे काम कराना है तो उनकी प्रशंसा करना आवश्यक है राजा हो चाहे कोई। नंद ब्रजे किला आसाते, आसाते माने हैं निश्चित, नंद के ब्रज में हैं, दोनों हैं सुतव आनकदुंदु है, आनकदुंदु के दोनों पुत्र जो यहां जेल में जन्म लिया, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वो और बलराम, ये दोनों वसुदेव के लड़के हैं और ब्रज में रह रहे हैं नंद ब्रज। आज पता चला कि ठीक ठीक नंद ब्रज में रह रहे हैं, नारद जी के कहने से, इसको अभी पता नहीं था, अंदाज से भेजता था। नंद ब्रजे किला साते सुतौ आनक दुंदु भे, राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शितः। राम कृष्ण दोनों ब्रज में हैं और इन्हीं दोनों से मेरी मृत्यु निश्चित की गई है, निश्चित की गई है, नित्रम दर्शितः। कैसे जानते हैं? पहले तो आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, तो उस दिन कन्या आ गई तो मैं झूठ माना। जिनका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, वे श्री नारद देव आज बताए। नारद जी बताए कि मेरी मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथ से, तब क्या करना चाहिए? वीर चारुण और मुष्टिक से कह रहा है, भवद्भ्याम यह संप्राप्त अन्येता मल्ललीलया, यहां आने पर मैं किसी उपाय से उनको यहां लाऊंगा, यहां आने पर मल्ललीला द्वारा पहलवानी का बहाना कर कुश्ती का दंगल और उनको मार देना दोनों, ये बताया बढ़िया से। तो ये मल्ललीला कैसे होगी? मंचा क्रियंताम विविधा मल्ल रंग परिश्रिता पौरा जनपदा सर्वे पश्यंतु स्वैर संयुगम। ये सारी जनता पौरा मथुरापुर के और जानपदा जनपद के, देश की जनता सब जुटेगी, सब देखें मल्ल युद्ध, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये घातक मल्ल युद्ध हो रहा है। स्वैर संयुगम, अपनी स्वच्छंद इच्छा से ये दंगल पहलवान लोग लड़ रहे हैं, ऐसा प्रचार होना चाहिए, पंपलेट में यही छापना चाहिए, जो भी एडवर्टाइज जो भी करना है, ये बात नहीं खोलनी चाहिए कि भीतर से दोनों को मारने की योजना है। सब जनता बैठे, सबके बैठने की व्यवस्था है, पौरा पूरा मथुरा नगर के लोग जो भी जुटना चाहे, जनपदा जनपद के लोग, मतलब तो कम से कम एक जिला, जिला को जनपद कहते हैं, मथुरा जिला के जितने लोग आए वे सब देखें, उनको यही भ्रम होना चाहिए कि स्वैर संयुग हो रहा है, ये दोस्ती की काटा कुश्ती चलेगी राजा के मनोरंजन के लिए। अब तब कहता है वो महामात्र से, और जो हाथी चलाने वाला था, महामात्र त्वया भद्र तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो, परसों मर जाओगे। वो बहुत भद्र स्वभाव का था, कौन से असल में जो लोग जितना खल थे उतने ही अच्छे लोग थे कंस के लिए। तो या पहले महामात्र, महावत, इसी महामात्र को महावत कहते, महामात्र त्वया भद्र रंग द्वार उपनीयता, रंगशाला के द्वार पर, गेट पर उपनीयता लाया जाना चाहिए। द्वीप कुबलया पीड़ जही तेन ममाहितौ, उस हाथी के द्वारा मेरे दोनों अहित, मेरे दोनों शत्रु कृष्ण बलराम को मार दिया, इनको कह रहा है मारने के लिए। शंका हुई कि आखिर जब आपके बहुत से लोगों को मारे तो बहुत बलवान है, हो सकता है कि बच जाए। नहीं, किसने कहा कि नहीं, क्यों अपने प्यारे पहलवानों को आप लगाएंगे इस कांटा कुश्ती में, द्वार पर ही खत्म कीजिए, दोनों प्रवेश करें उससे द्वार पर ही। तब महावत को कहा, हाँ हाँ उपाय है, तुम कुबले पेड़ हाथी को दरवाजे पर रखना है, द्वार पर हम दोनों को मारते हैं। क्या बहाना किया जाए उत्सव का, तो आरभ्यताम धन ऊर्जा गौर, आरभ्यताम धन ऊर्जा गह चतुर्दश्याम जथा विधि। बस शिवरात्रि के दिन कल धनुष यज्ञ इतना जल्दी जल्दी में था, इतना बड़ा फेस्टिवल बस कल होना चाहिए, जितना जल्दी कृष्ण बलराम को मारने के फेर में था। जथा विधि, जो विधि है वेद में चाहे लोक में, और भूतेश्वर महादेव जी के लिए पशु बलि दो। विशसंतु पशुन में ध्यान भूत राजाय मीडुसे। आज भी भूतेश्वर हैं मथुरा में, मथुरा के द्वारपाल माने जाते हैं, रक्षक भगवान तो राजा धीराज हैं मथुरा नरेश, और भगवान शिव मथुरा के रक्षक है, सिक्योरिटी गार्ड। ये भगवान शिव का पोजीशन है, इसी में अपने को आनंद मानते हैं, आनंदित मानते हैं। इत्याज्ञाप्यार्थ तंतज्ञः आहूय जदुपुंगवम्। इतना आज्ञा देकर के इसके बाद बुलाया जदुर श्रेष्ठ अक्रूर जी को, जदुपुंगवम्, जो पुंग गए हैं जदुओं में श्रेष्ठ हैं। गृहत्वा पाणिना पाणी, और अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए श्री अक्रूर जी के, अक्रूर जी को हाथ से हाथ मिलाया, बहुत घनिष्ठ संबंध। ततो क्रूर मुवाच भो भो दानपते मह्यम क्रियता मैत्रमाद्युत नान्यस्त्वत्तो हिततम विद्यते भोज वृष्णिषु अतस्त्वामाश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम जथेन्द्रो विष्णुमाश्रित स्वार्थमद्यगमद्विभुः। एक अद्भुत बात कंस कह रहा है कि विष्णु भोज वंश में, जगवंश में आप जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है, वास्तव में कोई नहीं था, रियली ये फैक्ट है, तो अतः मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। जैसे समर्थ होते हुए भी विभु, समर्थ होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, जैसे राजनीति में चतुर इंद्रदेव विष्णु का आश्रय लेते हैं, विष्णु को हीन कह रहा है, लेकिन फिर भी विष्णु का, वामन भगवान का आश्रय उपेंद्र का इंद्र लेते हैं। तो ऐसे ही मैं सर्वसमर्थ हूं, लेकिन फिर भी अब जरूरत पड़ गई तो आपका आश्रय ले रहा हूं। ये असुर लोग हमेशा भगवान को हीन समझते हैं। उदाहरण दे दिया तो कहा, जैसे इंद्र, विभु इंद्र, समर्थ इंद्र भी विष्णु आश्रित, विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, मतलब अपना अर्थ लक्ष्य पूरा करते हैं। कितना विशारद है इंद्र, अब चर्चा चली क्या स्वार्थ पूरा किए। अरे वो विष्णु भीख मंगा बनकर विष्णु गया, लेकिन आखिर इंद्र किसी तरह से आश्रय लिए बढ़ावा दिया। वो जाकर के भीख मांग करके उसे शर्म नहीं आई लक्ष्मीपति को, और भीख मांग कर लाया अपने भाई के लिए। वो समर्थ है लेकिन तब तो फिर भी जरूरत थी, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। भेंग दी, इस तरह से इंद्र विभू इंद्र कह रहा है और भगवान के लिए कोई विशेषण नहीं। यह कहा गया हो तो कि इंद्र ईश्वर की शरण लिए, भगवान की शरण लिए नहीं, समर्थ इंद्र देव, इंद्र देव नहीं पा सकता, इंद्र विष्णु की शरण लिए। तब आप क्या मेरी मदद करेंगे? आप एक काम कीजिए, गच्छ नंद ब्रजम तत्र, नंद ब्रज में जाइए, ये पहले प्रस्ताव है। वहां पर आनक दुंदु भी के दोनों पुत्र हैं, सुतव आनक दुंदु आसात है, तब यह आनय अनेन रथे न, उन दोनों को यहां लाइए कृष्ण बलराम को। तो अक्षुर जी ने कहा कि वे लड़के कैसे आएंगे? अरे रथ ले जाइए, सोने का रथ है, अभी नया नया बना हुआ है, इसको देख करके इस पर चढ़ने के लिए वो लोग मचल जाएंगे। रथ देखिए कितना दिव्य रथ, वास्तव में भगवान की शक्ति योग माया ने तत्काल रच करके रथ कंस के फैक्ट्री में रख दिया। ये ध्यान मेरा कि ये कहां से रथ आया, कोई जानकारी नहीं किया। कंस जोहने गया सबसे श्रेष्ठ रथ, तो विश्वकर्मा जी बना करके तैयार कर दिए थे, क्योंकि कंस जिस रथ पर बैठा है उस पर भगवान कैसे बैठ सकते थे? सबसे बड़े शिल्पी विश्वकर्मा जी कैसे भगवान को बासी रथ पर बैठने दे, मतलब शुद्ध रथ पर? इसलिए बिल्कुल नया रथ, इसलिए कह रहा है वो अनेन रथेन आनय, इस रथ से लाइए। मा चिरम, अगर अकुर जी पूछे कि कब लाएंगे, बस देरी में जाइए और पहुंच करके लाइए। क्या प्रयोजन पड़ गया आपका? कृष्ण बोला, निसृष्ट किल में मृत्युर्देव वैकुंठ संशय ही तौ आनय समम गोपैर नंदाद्यै साभ्युपायनैः। अब मैं आवृत्ति करा रहा हूं, बीच में लगा अर्थ करने। अब कह रहा अपना उपाय बता, उनको अभ्युपायन के साथ, जिससे नंदादी को छनक न हो जाए कि किस लिए राजा बुला रहा है। ये कहेगा साभ्युपायन, दूध घी दही आदि लेकर के आवे, उनको विश्वास में जो सचमुच उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। कहने पर कि आप अभिपायन के साथ, भेंट के साथ आइए, तो शंका नहीं है। और सारे गोप लोग आ रहे, नंद आदि बोल रहा है, नंद जिन गोपों का प्रधान है वे सब आ रहे। तो यहां आने पर उनका क्या प्रयोजन है? घात इससे यानी तौ, ये अक्रूर जी से इतना खुल करके बोल रहे, इतना बोका व्यक्ति था कौन से। घात इससे इहानीत काल कल्पेन हस्तिना, काल के समान समर्थ हाथी से उन दोनों को मरवाऊंगा। यदि मुक्त ततो मल्लई घात वैदितोपनय, और यदि हाथी से मुक्त हो गए, शंका बनी रहती है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को मार दिए, हो सकता है मुक्त हो जाए, हाथी से न मारे जाए। अगर हाथी से मुक्त हो गए तो मल्ल ही घात है, पहलवानों से मरवाऊंगा जो वज्र के समान है, वैद्युत उपमय। तो उनको मारने से आपको क्या लाभ होगा? फिर कहा, तयो निहतयो स्तप्तान वसुदेव पुरोगमान तद्बंधुन निहलिष्यामि वृष्णी भोज दशारह काम। जब दोनों हत हो जाएंगे तो वसुदेव के पीछे चलने वाले सब जादव तप्त हो जाएंगे, दुख में रहेंगे। कृष्ण बलराम के हत हो जाने से अब वो सुखी नहीं रह पाएंगे, दुख में पड़े, कमजोर हो जाएंगे। तो वसुदेव के साथ रहने वाले या उसके संबंधी जितने बंधु बांधव हैं वसुदेव सहित वृष्णी भोज दशारह काम सबको मारूंगा निहनिश्यान। अरे जो हमारा बाप है उग्रसेन, मत पूछिए, इतना बूढ़ा हो गया फिर भी राज्य लोलुप है। उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम। स्थवीर है, एक जगह से दूसरी जगह चलने की भी शक्ति नहीं, अभी भी राज गद्दी चाहता बाप, ऐसा बाप मिला। पितरम भी पारा, उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम तद्भ्रातरम देवकम च। और उसका भाई देवक, उग्रसेन और देवक, इन सबको मैं मरवाऊंगा। ये चाने विद्विषो मम ततश्चैषा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटकः। यह पृथ्वी नष्ट कंटक हो जाएगी, शत्रुहीन। फिर भी अक्रूर जी ने कहा, लेकिन आप कैसे सबका वध करने में समर्थ होंगे, बहुत बड़ा कार्य है। आप चिंता मत कीजिए, जरा संधो मम गुरु हो, मेरे बोस जरा संध है। गुरु माने बोस या ससुर। वैसे बदमाश का इस दमाद था, कितना इसको पोषता था जरा संध, वो सब कथा में है। तो जरा संध है, मेरे उस्ताद हैं, और द्विद जिसके बारे में आप जानते हैं, विकराल सर्प महान शक्तिशाली, वो मेरा दैत सखा है, प्रिय बिल्कुल प्राण बंधु है। इसके साथ संबरो नरको बाणो मये वृत सौ है ना, ये सब जरासंध और द्विद के अतिरिक्त संबरासुर नरकासुर बाणासुर ये मुझसे ही केवल प्रेम करते हैं, मुझे सब जीवित रखना चाहते हैं और मुझे ही सब सुख देना चाहते हैं, एकदम ससुख वासना ही में सब। संबरो नरको बाणो मये वकृत सर्ग तैरहम सुर पक्षीयान। मैं इनके साथ मिलकर और जितने भी सुरपक्षीय लोग हैं, जैसे पांडव आदि कुलकुल के, इन सबको मैं मरवाऊं। हत्वा भोक्षे महीन नृपान। तो सुरपक्षीय राजाओं का वध करके और मैं इस पृथ्वी को भोगूंगा, यह जान करके आप जल्दी जाइए और कृष्ण बलराम को यहां लाइए। लाना आसान है क्योंकि अर्भक हैं, बेचारे बच्चे हैं, रथ देखकर आकृष्ट हो जाएंगे, फेस्टिवल सुनकर के और सिटी देखने के लिए ललायत होंगे, बस लाइए। और उनके बाप आदि साथ में आएंगे तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे, अकेले थोड़े लाना है, कोई शंका करेंगे। अकेले किसी बच्चे को अब लाइए, चलो ये बहुत बढ़िया कार है, फिर बच्चा नहीं चलेगा, माता पिता के साथ जाना चाहेगा या अपने साथियों के साथ, है ना। तो अर्भक दोनों को कह रहा है कौन, ये दोनों अर्भक हैं, अभी बच्चे हैं, चले आएंगे। धनुर्मुख निरीक्षार्थम द्रष्टुम जदु पुरश्रियम। धनुष जग देखने के लिए फेस्टिवल में और मेला लगा हुआ है मथुरा जी में, और मथुरा की शोभा देखने के लिए। अब ये बात दो बात पर जोर दीजिएगा। चलिए राजा बुलाए हैं, बताइए सरकारी रथ से आ गया, क्यों नहीं बच्चे जाएंगे, और पिता के साथ निमंत्रण है, सारे समाज के साथ वहां जाएंगे, धनुष यज्ञ देखेंगे, पारमार्थिक लाभ भी होगा और जदुपुर की मथुरा जी की श्री देखेंगे, शोभा देखेंगे। जोर आप दीजिएगा, बार बार इस बात पर कहिएगा तो आ जाएंगे। क्रूर जी ने कहा, राजन मनीषितम सभ्य, आपने बहुत अच्छा सोचा। सभ्य मन समीचीन, और क्रूर जी कितने बड़े राजनेता थे, कुशल थे, अब बिल्कुल ठीक सोचे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, अब बहुत ठीक सोचे। तव स्वावद्य मार्जनम, हरे कृष्ण, कथा प्रारंभ कर रहे हैं, अभी तो शब्दार्थ कर रहे थे। अरिष्ट के वध की लीला का उपसंहार, अरिष्ट के वध की लीला का उपसंहार करते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं, गोपी नाम नयनोत्सव, और दूसरी बात प्रारंभ करने के पहले कहते हैं नारद जी के विषय में, देव दर्शन, श्री कृष्ण गोपी नाम नयनोत्सव हैं और श्री नारद जी देव दर्शन हैं। इन शब्दों का बहुत सुंदर अर्थ है, कृष्ण प्रवेश किए अरिष्ट का वध करने के बाद, वैसे श्री कृष्ण समस्त गोपों के लिए, क्या समस्त जीवों के लिए मूर्तिमान उत्सव है उनके आंखों के लिए, लेकिन गोपियों के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी विशेष कर रहे हैं। गोपी नाम नयनोत्सव, गोपियों के नयनों के लिए, नेत्रों के लिए मूर्तिमान उत्सव है श्री कृष्ण उत्सव, मतलब मूर्तिमान आनंद। यदि आनंद घनीभूत होकर के, सुख घनीभूत होकर के रूप धारण करें तो वो है श्री कृष्ण। गोपियों के भाव के अनुसार भगवान के सौंदर्य का प्रकाशन होता है। श्री कृष्ण में सब रस, सब सौंदर्य है, सर्व सौंदर्य विभूषित हैं, परंतु भाव के अनुसार उनका रियलाइजेशन होता है, दर्शन होता है। जिनके रही भावना जैसे प्रभु रति देखी तिन तैसे, कंस के रंगशाला में प्रवेश करने पर दोनों भाई वहां के 10 प्रकार के भावों के अनुसार बैठे हुए नागरिकों को 10 प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों को पर्वत के समान दिखाई दे रहे थे, दोनों थे नहीं पर्वत के समान, लेकिन उनका भाव ऐसा था, वो असुरों के वध की लीला सुनते सुनते उनके प्रति बहुत विकराल भाव पोषण किए, क्योंकि बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े हैं, तो उनको ऐसे ही दिखाई देते थे। अब मोर मुकुट लगाए हुए और मथुरा जी में विहार करते हुए काशनी काशे, कृष्ण बलराम का एक सुंदर गोप कुमार के रूप में दर्शन नहीं कर रहे थे पहलवान, इसलिए उनका लड़ने का उत्साह हो गया, उनके साथ पर्वत के समान देख रहे थे। तो ब्रज में सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, गौएं प्रेम करती हैं, गोप प्रेम करते हैं, बड़े बूढ़े सभी प्रेम करते हैं, परंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी स्पेशल गोपीजनों के लिए कह रहे हैं कि गोपियों के नयनोत्सव, गोपियों के नेत्रों के लिए मूर्तिमान उत्सव है श्री कृष्ण। उस समय अपने प्रियतम श्याम सुंदर को वे बड़े ही चाव से देख रहे थे, और सब समय देखने के लिए विकल रहते हैं, जैसा जुगल गीत में कहा गया। तो ऐसे गोपियों के नयनोत्सव श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध करने के बाद विवेश गोष्ठम गोष्ठ में प्रवेश किए, गोकुल गांव में प्रवेश किए, खिड़क से चल करके और घर में प्रवेश किए। पहले गोष्ठ में आए गौओं को सुखी करने के लिए, घूम घूम करके गौएं निश्चिंत हो गई। इसके बाद अपने घर में माँ यशोदा के पास प्रवेश की, सबल श्री बलराम जी के साथ, चाहे अपनी सेना के साथ, गोप ही उनकी सेना है जिसमें बलराम जी भी अंतर्निहित है, गोपों के साथ प्रवेश की। सदा श्री कृष्ण गोपों के साथ ब्रज में विवेश प्रविवेश प्रवेश प्रविष्ट हुए। अब श्री नारद जी आए ब्रज में, श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अब श्री कृष्ण ब्रज लीला का समापन करेंगे लोक दृष्टि से, और श्री मथुरा जी की लीला प्रारंभ करेंगे। उसको कहने के लिए वे कहते हैं कि अरिष्टे निहते गोष्ठे, गोष्ठ में अरिष्ट का जब वध हो गया, किसके द्वारा? कृष्णेन, कसम भूतेन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, अद्भुत अलौकिक कर्म करने वाले श्री भगवान के द्वारा जब अरिष्ट का वध हुआ। क्या अलौकिक कर्म था इनका? अलौकिक तो ऐसे ही है, ऐसे ही कर्म है कि इतने विकट भयानक दैत्य को हाथ से मारना, उसका सिंह उखाड़ करके उसको पीटना, उसको पीछे ढकेलना, बैल के साथ लड़ना, ये अलौकिक कर्म नहीं है तो क्या है? लोक में कोई लड़ेगा सांप के साथ? यह अलौकिक कर्म था, और वो अलौकिक बैल था, सांड था, उसके साथ बिल्कुल लोक में ऐसे कोई नहीं करेंगे। ऐसे कोई बदमाश सांड आ जाए तो उसको घेरेंगे, मारना चाहेंगे, लाठी चलाना चाहेंगे, किसी की सहायता नहीं लिया, अकेले बाहु युद्ध कर रहे थे। वो सिंह से लड़ रहा था, भगवान बाह से लड़ रहे थे और उसको परास्त कर दिए। ये है अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण, अद्भुत कर्मणा श्री कृष्णेन, कृष्णेन अरिष्ट का वध हुआ। तब भगवान नारद देव दर्शन कंसाय अथ आह, अब नारद जी कब आए डेट नहीं बताया गया है, लेकिन पता चलता है कि शिवरात्रि से एक दिन पहले आए होंगे या दो दिन पहले। दसवीं तिथि को आए, फागुन कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि को नारद जी आए, और नहीं एकादशी को आए थे, एकादशी को, द्वादशी को अक्रूर जी ब्रज में गए, और त्रयोदशी के दिन मथुरा में आ गए भगवान, और चतुर्दशी के दिन कंस का वध किया। कुछ इस तरह की लीला है। नारद जी को देव दर्शन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, देव श्री नारायण तद विषय दर्शनम ज्ञानम जस सतथा। देव दर्शन का अर्थ है भगवान के विषय में श्री नारद जी का बहुत ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, ज्ञान श्री नारायण ही उनके प्राप्तव्य हैं। जदवा देवम दर्शयति इति देव दर्शन, यह भगवान का जो दर्शन कराते हैं भक्तों को उपाय बताकर, जैसे ध्रुव जी को उपाय बताए, प्रहलाद जी को उपाय बताए, तो जो देव का श्री भगवान का दर्शन कराते हैं उनको देव दर्शन कहेंगे। यदवा देवा नाम व दर्शनम जस्य अतीन्द्रियत्व, अथवा जिनका दर्शन देवताओं के समान दुर्लभ है, भगवान शिव ब्रह्मा आदि के दर्शन के समान जिनका दर्शन है, क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं, स्पिरिचुअल हैं, इसलिए उनको देव दर्शन कि वह देवा नाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देवानाम जत दर्शनम मतम तदेव जस दर्शनम स। श्री कृष्ण ही जिनके दर्शन है, ये दर्शन का अर्थ होता है लक्ष्य या ज्ञान अनुभव। श्री कृष्ण का सदा दर्शन करते रहते हैं अपने मन में और उनका कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए नारद जी देव दर्शन। अथवा देव का अर्थ है श्री कृष्ण, श्री नारायण, उनके दर्शन के समान जिनका दर्शन है वे हैं देव दर्शन श्री नारायण। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पिसुमता नहीं कर सकता है, किसी की शिकायत करना, किसी के मन में भेद डालना, ये नारद जी नहीं कर सकते। गुण बता रहे हैं उनके सुखदेव गोस्वामी। देव दर्शन नारद भगवान, भगवान नारद, भगवान का अर्थ सर्वज्ञ, अर्थात श्री कृष्ण के लीला का क्रम जिनको पूरा पूरा पता है, पहले से डेट भी निश्चित है किस दिन कंस का वध करेंगे, किस दिन ये करेंगे, किसी ने करेंगे, इसको वे जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं सर्वज्ञ कृष्ण लीला भी। अब श्री कृष्ण इस स्थिति को स्थान बदलने का प्लान किए हैं और ये लीला करने का, इसको जो जानते हैं उनको भगवान कहे। तो श्री नारद जी कृष्ण लीला क्रम के अभिज्ञ हैं, सीरियल नंबर सब जानते हैं, तो इसलिए अब आ गया समय कि वे माथुर लीला प्रारंभ करें। इसके लिए श्री नारद जी आए, ये भगवान के संकल्प से ही आए, और आए आने के बाद जो भी स्वागत सत्कार किया होगा कंस, और इसका वर्णन सुखदेव जी नहीं कर रहे हैं, कंस के पास आते ही कहा, एक प्रकार से यह भाव व्यक्त है, वो सीरियस बात होती है तो राजन वो सीरियस बात है, मैं आपसे एक बार कहने आया। नारद जी ने मानो यह भाव व्यक्त किया कंस, कंस सब सारा काम धंधा छोड़ करके और नारद जी के साथ बैठा एकांत में, उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस बात है और आपसे प्राइवेट में बात करनी है। नारद जी ने कहा, तो नारद जी का बहुत बड़ा आदर था। नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी समान रूप से पूजा है देवताओं में और दैत्यों में, और आज तक कोई ये नहीं कहा नारद जी को कि नारद जी छल करते, और छल करते भी नहीं है। वास्तव में उनका उद्देश्य होता है दैत्यों का हित करना, असुरों का हित करना। ये जानते हैं इस शरीर में किसी भावना भारत नहीं हो सकता, उसका शरीर बदल करके वैकुंठ भिजवा देते हैं, नित्य धाम दे देते हैं। इसलिए नारद जी वास्तव में ऐसे जो लोक में प्रसिद्ध नारद हैं ऐसे नहीं हैं। लोक में लोग समझते हैं कि नारद झगड़ा लगाने वाला, इधर की बात उधर करने वाला, वैसे ये लीला द्वारा तो यही सिद्ध होता है, परंतु श्री नारद जी का आशय जो है वह है भगवान की प्रीति संपादन, भगवान प्रसन्न रहे, जो करना चाहते हैं करते हैं। तो भगवान नारद कंसाय आह, अथ का अर्थ है अनंत, अरिष्ट के वध के बाद श्री नारद जी कंस के पास आए, और कंस के पास आकर के उन्होंने यह कहा, यह कहा पर विचार किया गया है, कोई कहा कहा तो और कोई नहीं था एकांत में, वो राजा उनके चरण में बैठा कंस, और श्री नारद जी आसन पर बैठ करके और लगे कहे, ये कहे डायरेक्ट कहे कि माह इति अत्राह जशोदाया इति कन्या। वो जब वसुदेव और देवकी कारागृह में थे और तुम आठवें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, वो कन्या आठवें गर्भ के रूप में जन्म लेना। हाँ ठीक है, हाँ हम सोच रहा था विष्णु जन्म लेगा, विष्णु जन्म लेगा, लेकिन वसुदेव हमको कन्या दिखाया, कन्या ने जन्म दिया, बस कन्या ही थी मूर्ख, वही बात बताने आया हूं, कहता है कन्या थी। क्या बात है, कन्या जो प्रसिद्ध है देवकी, देवक्या अष्टम गर्भत्वे में प्रसिद्ध, देवकी के आठवें गर्भ के रूप में प्रसिद्ध जो कन्या हुई, उसी के विषय में बताना। वो जसोदाया सुता, जसोदा की जाई हुई थी, जसोदा की पुत्री थी, जसोदा की बेटी, जसोदा गोकुल में रहती है और देवकी कारागृह में थी। कौन सा आश्चर्यचकित हो गया, इसके साथ साथ अब वसुदेव जी पर क्रोध बढ़ने लगा। वसुदेव जी अपने घर में थे उस समय। जसोदाया सुता, वो जो कन्या देवकी के आठवें गर्भ के रूप में जन्म ली, वो वास्तव में देवकी की बेटी नहीं थी, बेटी नहीं है, जसोदाया सुता, वो जसोदा से जन्म ली है, जसोदा की पुत्री थी। कृष्णम च रोहिणीम च रोहिणी पुत्रम रामम च, और जसोदा के यहां, नंद के यहां जो कृष्ण नाम से प्रसिद्ध लड़का है और बलराम नाम से प्रसिद्ध लड़का है, कृष्णम च रोहिणी पुत्रम रामम च देवक्या, ये दोनों देवकी के पुत्र हैं। ये बहुत भारी आश्चर्य हो गया कंस को, और कोई उस समय नहीं था, अकेले था, कृष्ण और राम बलराम ये देवकी के पुत्र हैं। हाँ सप्तम सुतम अर्थात देवक्या अष्टम गर्भत्वेन प्रसिद्धाम कन्याम जसोदाया सुताम, और जसोदाया सुतत्वेन प्रसिद्धम कृष्णम देवक्या सुतम, जसोदा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध कृष्ण को श्री नारद जी बताए कि वो देवकी का बेटा है, देवकी का पुत्र है, ये तो सत्य ही बता रहे हैं। और जसोदा का भी पुत्र है देवकी के पुत्र, सुतम मतलब खास पेट से जन्मा हुआ सुत। रोहिणी पुत्रम रामम च, और रोहिणी पुत्र बलराम को देवकी के सातवें बेटे का, सातवां पुत्र का, वो जो राम नाम से प्रसिद्ध है बलराम, वो रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, वसुदेव का ही पुत्र है, लेकिन वो देवकी का पुत्र है, ये भी गुप्त बात सत्य बता रहे थे। पहले श्री बलराम भी देवकी के गर्भ में थे, तो देवकी का सातवां गर्भ है। नंद सुतत्वे न प्रसिद्धम रामम च वसुदेव भार्या रोहिण्या सुतमा, अथवा बलराम जी का पता नहीं था वो किससे उसका जन्म हुआ है, इतना प्रसिद्ध बात थी कि नंद बाबा के दो पुत्र हैं। तो श्री नारद जी कह रहे नंद के पुत्र के रूप में जो प्रसिद्ध है बलराम, वो बलराम वसुदेव का पुत्र है, रोहिणी से उसका जन्म हुआ है। अच्छा, ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, तो यह कैसे हो गया कि वो कन्या हमको दिखाई गई, कन्या दिखाई गई और ये दोनों कहां से भाग गए कि नंद के यहां रहने लगे, ये कैसे हुआ गुरुदेव? ये कहे त्वतः विध्यता तुमसे भयभीत वसुदेवेन स्वमित्रे न्यस्तौ, तुमसे डरता था वसुदेव, इसलिए तुमसे डर करके अपने दोनों पुत्रों को अपने मित्र नंद के यहां न्यास के रूप में रख दिया, धरोहर रखा, अंततः वो लाएगा, न्यस्त कह करके सावधान कर रहे हैं, नंद के यहां वे न्यस्त हैं,
धरोहर रखे हुए हैं। धरोहर अंततः आदमी ले लेता है ना, तो वे आएंगे वसुदेव और देवकी के पास और अंत में तुम्हारा वध करेंगे, यही करेंगे। न्यस्त और स्वमित्र, स्वमित्र कह करके ये कह रहे हैं कि इतना घनिष्ठ संबंध है नंदलाल वसुदेव में अपने नवजात पुत्र को जो रख सकता है व्यक्ति, तो तुम समझ रहे हो कितना घनिष्ठ संबंध। उसी घनिष्ठ संबंध के कारण वसुदेव उनके यहां ले जाकर के रखते हैं दोनों को। तो न्यास तो केवल कृष्ण का हुआ था, कृष्ण को रखे थे, बलराम जी को नारद जी नहीं, वसुदेव जी रखने नहीं गए थे, उनको योग माया ने रखा था। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं नारद जी कि वसुदेव ने दोनों पुत्रों को नंद के यहां धरोहर रखा है। न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे हुए, अपने मित्र नंद कह रखे, इसलिए कह रहा है, इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि श्री बलराम जी का आना भी जरूरी है। श्री बलराम जी के प्रति भी वो दोस्ती स्वीकारे और बुलावे। और हरिश्वर जी कहते हैं कि श्री नारद जी ने सोचा कि यदि केवल श्री कृष्ण आएंगे, नारद जी सोच रहे हैं कि फिर मुष्टिक का वध कैसे होगा। श्री नारद जी सबको साफ कराना चाहते हैं, तो उनकी मृत्यु श्री बलराम जी के हाथ से लिखी गई थी, इसीलिए कह दिए कि दोनों को रखा वसुदेव। वास्तव में आराध्य में अकेले एक बेटा को ले गए थे और दूसरी बार किसी को ले नहीं गए, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों को धरोहर के रूप में कह रहे थे। न्यस्तौ सौमित्री थी बिना रामम कृष्णा गमनमिह चेत, यदि श्री राम के बिना कृष्ण आएंगे तो मुष्टिक बधो न कुटस्यापि स्यात् स तद उभय हन्ता इति अजलिपि। अजलिपि थी ये ब्रह्मा जी के लेख में, ब्रह्मा जी के घर में श्री नारद जी रहते ही हैं, तो ब्रह्मा जी का लेख पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि कूट का और मुष्टिक का वध श्री बलराम जी से होगा। तो भगवान से जब आएंगे कहने के लिए पहले कौन से मिल रहे हैं, तो श्री बलराम जी को भी न्यास के रूप में कहे, रखे गए थे कृष्ण लेकिन उनको भी कहे कि न्यस्तौ दोनों रखे गए हैं वसुदेव नबी देता वसुदेव के द्वारा। तो मुष्टिक वध और कूट का वध नहीं हो पाएगा क्योंकि तब उभय हंता उन दोनों का वध करने वाले श्री बलराम जी ने इति अजलिपि अजलिपि है, अजलिपि में लिखा गया, श्री ब्रह्मा जी ने लिख दिया था, सबकी मृत्यु और सबका जन्म ब्रह्मा जी लिखते हैं, कब कौन व्यक्ति मरेगा क्या होगा वो सब लिख देते हैं। इति अजलिपि मृषा स्याद, श्री नारद जी ने सोचा कि हमारे पिता की लिपि व्यर्थ हो जाएगी अगर श्री बलराम जी नहीं आएंगे तो। मुष्टिक और कूट का वध श्री बलराम जी किए हैं, ये स्वाभाविक है, श्री नारद जी वहां रहते थे पढ़ कर आए थे। मृषा स्याद इति उच्च न्यसन उभय, इसीलिए नंद सदन है, नंद सदन में उभयो न्यसनम का है नारद जी। नारद जी इतना झूठा थोड़े बोल सकते हैं, उन्होंने कह दिया कि दोनों का न्यास किया, और वास्तव में रोहिणी से जन्म हुआ था तो एक प्रकार से वो न्यास ही है ना, वहां रोहिणी जी डर करके रह रहे थे, आखिर रखे ही हुए आखिर पुत्र दोनों वसुदेव जी के हैं। तो श्री हरिश्वर जी कहते हैं कि एक रखे गए हैं और दोनों का नंद सदन में रखना ये कैसे नारद जी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये अजलिपि मिथ्या हो जाएगी इसलिए उन्होंने कहा उभय विन्यास कथनम, उभय विन्यास कथन किए दोनों को नंद के घर में रखने के। इतनी बात केवल नारद जी कहे, नारद जी को समय नहीं रहता इसके बाद तो बस ये कह दे। तो वसुदेव बहुत डरता था तुमसे और भय करके और रख दिया दोनों बेटा। तो वो पूछा होगा कंस, अवश्य जिज्ञासा किया होगा कि तो क्या करना चाहिए हमको, और जाभ्याम ते पुरुषा हता, जिन कृष्ण बलराम के द्वारा तुम्हारे पुरुष सब मारे गए, जाभ्याम ते पुरुषा हता, त्रिणावर्त, बकासुर, अघासुर, धिमकासुर, परलंब आदि सब मारे गए, तुम्हारे पुरुष ते पुरुषा, ये सब कंस के स्टाफ के थे, इन सबको दोनों ने मारा है, वो सब वसुदेव के पुत्र हैं, वो दोनों वसुदेव के पुत्र। वही वही शब्द का अर्थ प्रसिद्ध में वही तत्सर्व कि तोम व मूढ़ न जानासी, मूढ़ न, वही का अर्थ प्रसिद्ध बात है, ये सब लोग जानते हैं कि वो दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, और वसुदेव आधी रात के समय वसुदेव उनको रखे हैं अपने मित्र के, सारी दुनिया जानती है, केवल तुम ऐसे मूढ़ हो जो तुमको मालूम नहीं है, नारद जी ने यह कहा। तो इसका मतलब था कि आप अपनी मूढ़ता छोड़ो और कुछ उपाय सोचो जीने के लिए, ऐसे डायरेक्ट कहे नहीं कि दोनों को बुलाकर मरवाइए, लेकिन आशय वो समझ गए, वाक्य ऐसे बोलते हैं कि तो उन दोनों के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है, कृष्ण बलराम के यहां से तुम्हारे बच्चे। अब वहां किसी को भेज रहे हो तो वे मारे जा रहे हैं, तब कुछ उपाय सोचो, कहीं गुरु जी साफ बोले उपाय क्या करे, तो उनको यहां बुलाओ अपने स्थान पर, अपने स्थान पर सब व्यक्ति बलवान होते हैं, वो स्थान के बल से जीत रहे हैं, पुरुषार्थ के बल से नहीं, स्थान ऐसा है उनका अपना अखाड़ा अपना वृंदावन वहां मार देते हैं, अपने स्थान पर व्यक्ति बलवान होता है, वास्तव में सत्य बात है, और भगवान कृष्ण के विषय में बात सत्य नहीं है, वो सर्वत्र एक समान बलवान है। राजा धृतराष्ट्र को चिंता हो रही थी, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसलिए उनके मुख से पहले भय से निकला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हाय हाय तो बहुत गड़बड़ स्थान चुन लिया गया युद्ध के लिए, धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो अधर्म की विजय कैसे होगी, धृतराष्ट्र को पता था कि हमारे सभी पुत्र अधार्मिक हैं, दुष्ट हैं, इतना पता था, तो स्थान चुना गया जिसमें धार्मिक लोग जीतेंगे, वो स्थान अब मदद करेगा, धर्म क्षेत्र है इसलिए धर्म धर्म के को मदद करेगा, जो धर्म पूर्वक जीवन जी रहा है वो लोग जीतेंगे, और धर्म पूर्वक जीवन जीने वाले कुरुक्षेत्र में नहीं जी पाते हैं ठीक से, वो स्थान का प्रभाव धर्म भूमि है। तो इसी तरह से श्री नारद जी ने कहा कि वो उनका अपना स्थान है, इसीलिए तुम ये भी बहुत बड़ी गलती किए कि अपने आदमियों को बारी बारी भेजते गए और वे लोग जब गतवा न निवर्तन करते गए, जो गया फिर लौटा नहीं, तो और क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं, तुम्हारे सभी आदमियों को उन दोनों ने मारा है, किसी किसी को बलराम ने मारा, किसी को कृष्ण ने मारा, किसी किसी का वध दोनों मिलकर किए, या एक जब वध करता था तो उसमें सहायक दूसरे का रहता ही था, तो दोनों ने सब काम किया है, तुम्हारे पुरुषों को मारा है, और ये वसुदेव के दोनों पुत्र है। जाभ्याम ते सुताभ्याम ते पुरुषा तौ पुरुषा त्रिणावर्ता त्रिणावर्तादि आप जना है हता नासी पर, ते जना माने तुम्हारे अपने व्यक्ति, अपने संबंधी परिवार के इतने प्यारे लोग जिनको तुमने प्यार किया ये सब मारे गए। श्री नारद जी कह करके चुप हो गए, वो सारा अभिप्राय समझ गया। निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलितेन्द्रियः, ये बात सुन करके भोजपति कंस बहुत क्रोधित हुआ, क्रोध से उसकी सारी इंद्रियां कांपने लगी, ऊंट फड़कने लगा, आंखें लाल हो गई और मन बिल्कुल विक्षिप्त हो गया। प्रचलित इंद्रिय निशातम असीमात दत्त, और वहां पर तलवार बहुत था, कौन सबसे तेज फरगाया हुआ तलवार उसको लिया, तीक्ष्ण निशातम शान धराया हुआ तलवार एक बार में वसुदेव का गर्दन उड़ा दिया। बाप रे बाप, हमारे साथ इस तरह से सत्यवादी बन रहा है और भीतर से इतना छल कर रहे हैं। उसी नारद जी से कंस ने पूछा होगा, बोले वो तो जेल में था, कैसे पुत्र को पहुंचाया? अब आप सोचिए उसका ट्रिक, चाहे हथौड़ा रखा होगा, तोड़ ताड़ करके ले गया फाटक को, कुछ किया जो भी हो, है उसी के पुत्र दोनों। तो कोपात प्रचलित इंद्रिय, कोपात वसुदेव जी घामसया निशातम असीम आदत्त, कोपात प्रचलित इंद्रिय प्रचलितम क्षुभितम इंद्रियम मन जस्य तथा भूतम सन, क्षुभित हो गया। बाप जी बाप, बहुत चिंता में हो गया, हमारी जिससे मृत्यु है वो अभी जीवित है। एक तो भय हुआ, प्रचलित इंद्रिय का अर्थ भय से कांपने लगा, और क्रोध भी ऊपर से, क्रोध भी हुआ भय भी हुआ, इसलिए व्याकुल हो गया। और निशातम असीम आदत्त, नारद जी भी बैठे थे और उनके सामने ही तलवार दे दिया और कहा ठीक है आप थोड़ा बैठे रहिए, मैं अभी उसका वध करके आ रहा हूं, अभी उसका वध करके आ रहा हूं। निवारी तो नारदेना, तो तलवार लेकर के जब वसुदेव जी के घर जाकर के मारने की सोचा तो श्री नारद जी ने निवारण किया, निवारी तो नारदेन, नहीं ये काम ठीक नहीं। नारद जी ने कहा कि क्यों गुरुदेव, क्यों रोकते हैं ऐसे दुष्ट का वध करने पर? वसुदेव इतना झूठा दगाबाज कपटी, नहीं रुको, तुम्हें ये अपना अर्थ देखना है, तुम्हारी मृत्यु किसके हाथ से है, वसुदेव के हाथ से है कि कृष्ण बलराम के हाथ से? तुम्हारी मृत्यु तो कृष्ण बलराम के हाथ से है ना, तो अपने मृत्यु को टालो, अपने मृत्यु को मारो, वसुदेव को क्यों मारते? वसुदेव को मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, उनको उल्टे घाटा होगा। नारद जी ने कहा घाटा क्या होगा? घाटा ये होगा कि जब कृष्ण बलराम सुनेंगे कि हमारा बाप मथुरा में मारा गया, तो मथुरा तो भूल करके भी नहीं आएंगे, जो सरकार के द्वारा राजा के द्वारा पिता का वध हुआ तो कभी नहीं आएंगे, पर तुम्हारी मृत्यु के रूप में वर्तमान रहेंगे, मृत्यु उनसे होने वाली है। तो पिता का वध सुन करके, बल्कि जिस ब्रज में है, जिस जंगल में है, उसको भी छोड़ करके घनघोर जंगल में भाग जाएंगे, खोज भी नहीं पाओगे उनको। और बलवान इतने हैं, इतना सीखी हैं कि किसी समय तुम्हारा वध कर सकते हैं दोनों, वो इतने बड़े बड़े लोगों को, तुम्हारे जनों को, तुम्हारे रिलेटिव को जब ये लोग मार दिए, तुमसे खतरा बना रहेगा, अपने पिता का वध सुन करके वे भाग जाएंगे, फिर तुम उनको बुला नहीं पाओगे, खोज नहीं पाओगे। पिता का वध होने पर फिर कौन व्यक्ति ठहरेगा कि हमको बुला करके हमारा भी वध कराएगा? तब क्या करना चाहिए? तो श्री नारद जी के मत के अनुसार ही नारद जी ने कहा नहीं नहीं, वसुदेव का वध करना बिल्कुल ठीक नहीं, और वसुदेव मर भी जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु तो बनी ही है, इससे फायदा क्या हुआ? और तुम्हारी मृत्यु किस बलराम के हाथ से है, तो जब मृत्यु सुनेंगे कि कंस ने हमारे पिता को मार दिया तो उनका क्रोध कितना बढ़ेगा, और वे बलवान है ही, तो क्रोध में खतरा मत लो दोनों का। उनके पिता का वध करना कृष्ण बलराम को कुपित करना है, या वो भाग जाएंगे डर करके, उनको खोजना कठिन हो जाए। तो क्या करना चाहिए, आप ही जो कहें वो करें, हम क्या करें? तो नारद जी ने कहा कि यदि इनको तुम बांध करके रखोगे तो अपने पिता के विपत्ति को सुन करके, हो सकता है अपने पिता को देखने के लिए दोनों आए, एक संभावना रहेगी कि पिताजी हैं मथुरा में रहते हैं, विपत्ति में हैं, तो दोनों भाई उनको देखने के लिए आ सकते हैं ना। कभी जेल में जाते हैं स्वजन लोग कैदी से भेंट करने के लिए, तो भेंट करने के लिए आएंगे दोनों। यहां आने पर फिर जो भी तुमको करना होगा करना चाहिए, तो ऐसा करो कि आने की संभावना रहे, या अपने पिता को जेल से मुक्त करने के लिए भी वे आएंगे। दोनों ऐसे बलवान हैं, तुम सुनते ही हो, तो अपने पिता को छुड़ाने के लिए भी आएंगे, या अपने पिताजी से माताजी से भेंट करने के लिए आएंगे। इसलिए वसुदेव को कारागृह में बंद करो, ये उपाय है। श्री नारद जी इतना कह करके चले गए। बहुत थोड़े समय में कह दे, सब समझ में आ गया कि वो कन्या देवकी की कन्या नहीं, वो जशोदा की कन्या है, और कृष्ण नामक जो नंद का पुत्र है वो नंद का पुत्र नहीं है, वो वसुदेव जी का है, और बलराम भी वसुदेव जी का है, और उन्हीं दोनों के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। दोनों इन दोनों को वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहां रख दिया है। जब ये सुनकर के वसुदेव का वध करने के लिए तैयार हुआ तो नारद जी ने मना कर दिया और चले गए। निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः। निवारण में श्री नारद जी यही बता रहे थे कि तत्सुतौ वसुदेव सुतौ, वसुदेव के दोनों पुत्र तुम्हारे मृत्यु हैं, ये वसुदेव नहीं, वसुदेव से तुम्हारा जन्म नहीं जाएगा, इसके पुत्र से जाएगा, तो इसलिए वो छोड़ दिया। और ये सुन करके ज्ञात्वा लोहमय ही पास है, अपने पिता को देखने के लिए और जेल से छुड़ाने के लिए भी दोनों आ सकते हैं, अतः वसुदेव को लोहे के जंजीर में बांध दिया, हथकड़ी आदि लगा करके। और ऐसा नहीं था कि हथकड़ी लगा कर फ्री छोड़ दे, जैसे पशु को खूंटे में बांध देते हैं, ऐसे लोहा के बंधन से स्तंभ में, खंभे आदि में बांध, जिससे कि हिलने न पाए, घूमने न पाए, क्योंकि कंस को ये हो गया कि ये हो न हो, कोई तांत्रिक है चाहे कुछ है, जब जेल का फाटक तोड़ सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए लोहमय ही पास है। कोई कोई चीज और भी लगा होगा, लेकिन लोह लोहमय लोहा का पास इस्तेमाल के बबंध बांध दे, सह भार दिया, भारजा के साथ देवकी के साथ बांध दिया, क्योंकि पिताजी से भेंट करने हो सकता है दोनों भाई न आए, लेकिन मां से भेंट करने जरूर आ जाएंगे देवकी से, तो इसलिए भी कंस बांध देवकी को भी सह भार दिया, भारजा के साथ वसुदेव जी को बांध दिया। बबंध बबंध हते किल पलाई से थे, वसुदेव जी का वध करने पर दोनों भाग जाएंगे। बद्धे च पितरी तन मोचनार्थम अत्र गच्छे दिति श्री नारद नारद मंत्रणा एव मंत्रणया एव इति गेय सह भार्या देवकी सहितम एतच्च आगमने अविलंबार्थम परम दुष्टत्वा देववा। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि देवकी जी को बांधा जेल में तो ये सोच करके कृष्ण बलराम जल्दी आएंगे मां को देखने के लिए, अथवा परम दुष्ट था इसलिए वो किया परम दुष्टत्व देवा, वसुदेव जी को जेल में बांधा ठीक किया, लेकिन बेचारी देवकी को भी बांधा, तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं कि अपने मां को इस विपत्ति में सुन करके कृष्ण बलराम जल्दी आएंगे मथुरा छुड़ाने के लिए या देखने के लिए, अथवा कंस महादुष्ट था, दुष्टता बस किसी स्त्री को किसको जेल में बंद कर रहा है इसको ध्यान नहीं था। प्रतीयाते तु देवर्षौ कंसया भाष्य केशिनम् प्रेषयामास हन्नेताम् भवता राम माधवौ। देवर्षौ प्रतीयाते, ये सब बात कह करके जब देवर्षि जी भगवान का कीर्तन करते हुए चले गए, वहां कीर्तन नहीं किए कंस के पास, अब वो आकाश में वीणा बजाए तुम चल दिए, वीणा के बजाय वहां से अब जा रहे हैं वृंदावन, कंस से मिलने के बाद अब कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। आभास्य कंस केसी को बुलाया, केसी इसका नाम था, ये बहुत भयावह असुर था, बहुत भयानक, उसको बुलाया और आभास्य, आभास्य मतलब संबोधन करके बोला, वीर कहा होगा चाहे कुछ कहा होगा, प्रशंसा किया होगा। प्रेषया मास, भेजा हन्नेताम, हन्नेताम भवता राम माधव, राम माधव हन्नेताम, ये दोनों मारे जाएं, तुम जा करके ब्रज में दोनों को राम और केशव को मार दो, राम और माधव को मार। किसी विशेष कारण से राम शब्द निकल रहा है बलराम जी के लिए और श्री कृष्ण के लिए माधव, माधव मधुवंश, तो बलराम जी भी मधुवंशी थे लेकिन कृष्ण का नाम माधव के रूप में प्रसिद्ध था, जिस कारण से हो ये माधव कहा। राम माधव को का तुम वध करो, जाओ भेजा, आज्ञापया मास, प्रेषया मास आज्ञापया मास, आज्ञा दिया, किसी कैसे चला कैसे घोड़ा बन करके ब्रज में, वो कथा बाद में आएगी। इसके बाद केसी से बात कहा, ये सारी बात कहा, कृष्ण बलराम से मेरी मृत्यु है और वो दोनों नंद ब्रज में रहते हैं, ये तुमको पता है, अगर पता ना हो तो लिखवा देता हूं, कहां पर है नंद का घर और किस टाइम तुमको जाना है, कैसे मारना है, चलेगा? नहीं, ठीक है सरकार, सब मालूम है, हम लोग इतना दिन खाते पीते हैं, वेतन लेते हैं, किस काम आएंगे। बड़े उत्साह से चला, एक ही दिन सब लोग चले थे, वो भी उसी दिन आया था जिस दिन अक्रूर पहुंचे थे उसके पहले, और उसी दिन नारद जी भी जाएंगे। ततो मुष्टिक चारुण सल तो सलकादिकान अमात्यान हस्तिपाश चैव समा हुया भोजराष्ट्र। तो गया कि नहीं गया ये नहीं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं केसी को, तो मतलब उसको आज्ञा दिया और वो भी अभी बैठा ही रहा, चलो बैठे रहिए, सभा गुप्त करनी है। तो इसके बाद मुष्टिक चारुण सौल तोसल आदि और भी बहुत से लोग और अमात्य, ये सब अमात्य थे, ये सब राय देने वाले थे, मंत्री थे कंस के, और हस्तिपांश महावत को भी, एक हस्ती नहीं, एक हस्तिक नहीं, हस्तिपान बहुत से हाथियों के चालक को बुलाया जो हाथी को चलाते थे। तो उस दिन कंस उस मीटिंग में कहा, कौन सबसे कुशल है हाथी चलाने में, वो पूछा होगा, एक फर्स्ट क्लास का नंबर जिसको आया होगा उस ड्राइविंग में, हाथी ड्राइविंग में, तो उसको तो कहा, लेकिन सब वो हाथी हाँकने वाले बैठे थे, सरकारी रिवार्ड मिलेगा ना, आखिर हाथी चलाना काम है और राजद स्पेशल प्रेरित कर रहा है। उनको बुलाया, समा हुआ, सबको सम आ हुआ, बहुत प्रेम से बुलाया और कहने लगा। ततः का यहां अर्थ है केसी दैत्य प्रेरणानंतरम, केसी दैत्य को प्रेरणा देने के बाद, केसी दैत्य भी उसमें बैठा है, जाएंगे ये सब मंत्रणा हो गई लेकिन समय से जाएंगे, तब तक सुनने लगे राजा का क्या प्लान विस्तार से। मुष्टिक, चारुण, शल, तोशल आदि कान और इन मंत्रियों को और महावतों को बुलाया और उनसे कहा। अमात्य का अर्थ है ये सब गृह मंत्री घर आए, होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री के लोग उसके सब थे, ये गृहमंत्री, गृहमंत्री लोग। गृहमंत्री का अर्थ था अपने बिल्कुल भीतर के सारे कार्यभार देखने। तो हस्तिपान च एव हस्ति दक्षिण च, युद्ध कुशल पहलवानों को और बुद्धि कुशल मंत्रियों को अमात्य अलग से है, युद्ध कुशल पहलवानों को, बुद्धि कुशल मंत्रियों को और हस्ती संचालक कुशल, संचालन कुशल महावतों को, अन्यश्च और अन्य भी बंधु, अन्य भी लोग थे, कंस के भाई थे कई, सबको बुलाया, सबको बुला करके और प्राह ब्रवीत यह बात बोला, भो भो निशम्यता में तक वीर चारुण मुष्टिकौ। निशाम्यताम दोनों सुनो, दोनों को संबोधित कर रहा, सभा में बहुत लोग बैठे हैं लेकिन संबोधन कर रहा है चारुण और मुष्टि को। भो भो, भो भो कर सकता है हे, मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो सावधान कर रहा है, हे वीर चारुण और हे वीर मुष्टि और इत्यादि जैसे हमारे अलाउंस में बोला जाता है, सब सावधान होकर सुनने लगे। नंद ब्रजे किला साते सुतौ आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र, दो पुत्र नंद ब्रजे आसाते, नंद ब्रज में है, इसका मतलब है कि पहले से ही प्रसिद्ध हो चुका है कि वसुदेव का पुत्र काल है, कंस का है, ये इस बात का प्रचार था। तो ये कहा एक नहीं, वसुदेव के दो दो पुत्र नंद के घर में रह रहे, नंद ब्रज में रह रहे, बहुत चिंता से बोल रहा था, हे वीर, हे चारुण, हे वीर मुष्टि, अत्र कर्मधारय बहुवचनांत पाठ, हे वीरायती, हे चारुणा, हे मुष्टिका इत्यादि। जब किसी को मान दिया जाता है तो उसको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे भी बोला होगा, आप सुनिए, एतत् निशाम्यताम, हम जो बात बोल रहे हैं उसको सुनिए, सब सुन रहे हैं ना, सब बोले यस यस, सब सब सुन रहे, अब बोलिए हम सब सुन रहे हैं। सुनो, आनक दुंदुभी के दो, दोनों पुत्र, ये दो पुत्र दोनों नहीं, वो श्री बलराम जी को नहीं जानते थे कि वो वसुदेव के पुत्र है, इसे दो पुत्र एक नहीं, दो पुत्र नंद के ब्रज में रह रहे हैं, वसुदेव जी को आनक दुंदुभी कह रहा हूं। इसके जन्म के समय देवताओं ने खुशियां मनाई थी, हमारे शत्रु देवता नगाड़ा पीटे थे, शहनाई बजाए थे, तो यह इस तरह से सफल हो रहा है कि जेल में जन्मे हुए लड़के को पहुंचाया, सब सुनकर के दंग थे, हाँ वो तो आनक दुंदुभी है ना, वसुदेव नहीं कह रहा, आनक दुंदुभी कह रहा है, जन्म के समय ही जिसको इतनी बड़ी सफलता सूचक उत्सव किया गया था, देवता लोग नगाड़ा पीटे थे और दुंदुभी बजाए थे, उसको याद कर रहा है। उसके दोनों पुत्र नंद ब्रज में हैं, आशाते कहीं भागे, बहुत दूर नहीं है, नंद के ब्रज में है, नंद का ब्रज यहां से थोड़ी ही दूर पर है, नंद ब्रज बड़े उपेक्षा से कह रहा है, वो नंद नामक अहिर का वो कुछ क्षेत्र है, वहां रहता है, सब कंस के अधीन ही रहते हैं। नंद जी को राजा वजा कुछ नहीं कहता ये सब। ये गोप को क्या राजा कहे, नंद का ब्रज है उसमें दोनों रहते। अच्छा क्या नाम है उनका, राम कृष्ण। उनका नाम सुनकर के आश्चर्य हुआ, सुनो राम, राम नाम है का और एक का नाम है कृष्ण काला। लेकिन काला अर्थ नहीं है, कौन से का भाव छोड़िए, राम का अर्थ है कृष्णम रमयति इति राम, जो कृष्ण को हमेशा रमा में सुख दे उनको राम कहते हैं। और कृष्ण तो परम सुख के आधार हैं, पर ब्रह्म है। तो राम और कृष्ण इस नाम से दोनों विख्यात हैं। ततो मह्यम मृत्यु, और सब विवरण बता रहा है, उन दोनों के हाथ से हमारी मृत्यु है। किल निश्चित निर्दर्शिता, ये निर्दर्शित है, ये एकदम यही अकाट्य बात है कि उन दोनों के हाथ से मेरी मृत्यु है, क्योंकि श्री नारद जी ने सपोर्ट किया। श्री नारद जी कहे निदर्शिता, नितराम दर्शिता, भवद्भ्याम यह संप्राप्त हो, यह संप्राप्त हो, इस मथुरा में जब दोनों आएंगे तो तुम लोगों को चाहिए कि उनका वध करो, बस यही काम, एकमात्र यही काम, और कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं। मथुरा में आने पर उनका वध करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, नहीं जब कहा कि हमारी मृत्यु है कृष्ण बलराम के हाथ से, तो कुछ लोग चलने के लिए तैयार हो गए, नंद ब्रज में जा करके और मारेंगे कृष्ण बलराम, चलने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मैं अपने प्यारे पहलवानों को कष्ट देना नहीं चाहता, तुम अपने घर में ही बैठो, यहीं पर काम करना, भले यह संप्राप्त हो, यहां पर खूब आसानी से ठीक ढंग से वे आ जाए, उनको पता ना चले कि यहां क्या खड़जंत चल रहा है, यहां पर बहुत आसानी से मारना है, यहीं आने पर, वहां उनके स्थान पर जाने पर खतरा हो रहा है, वहां तुम नहीं जीत पाओगे, कौन से ये वहां ब्रज में पता नहीं वो स्थान लग रहा है क्या लग रहा है, जो जाता है मर जाता है हमारे पक्ष में। वो कौन से स्थान ठीक नहीं, यह संप्राप्त अन्यता मल्ल ली है, यहां आने पर मारो, यहां आने पर मारो, कैसी मारेंगे, क्या उपाय होगा, जो सीधे मारे, कौन से कहा कि नहीं 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 नहीं, उनको मारना सरल नहीं है। मारने का एक उपाय है मल्ल लीला का, पहलवानी का, एक उत्सव के रूप में किया जाए, छल से उनको मारा जा सकता है, सामने जो मारने जाएगा वो मर जाएगा, जितने लोग गए सामने गए गलती किए, इस भी कपट से गए छल करके भेष बदल करके, लेकिन सबको मारते गए, वे सावधान रहेंगे तो उनको मारना असंभव है, असावधान है कुश्ती करे मल्ल युद्ध करे उस समय मार देना, मर्म स्थान पर कलेजा में मार देना, मर जाए जो भी। हमेशा हनन शब्द का प्रयोग करे, हा का अर्थ होता है अनुगामी, सरस्वती जी उसके मुख से अर्थ कर रहे हैं कि यहां आने पर सदा के लिए उसका हो जाना है, उसका स्वागत करना है, उसी का हो जाना है, सरस्वती जी अर्थ करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए मारना मर जाना इस शब्द का प्रयोग सरस्वती जी कैसे कर सकते हैं। तो हन्यता मल्ललीलया, प्राप्यता मल्ललीलया, मल्ल युद्ध के द्वारा उनका बल, मथुरा में जब सम्यक प्राप्त हो जब आ जाए तब तो, ये नहीं कि कोई राशि और वो लाना हमारे हमारा कर्तव्य, कैसे आएंगे इसके विषय में मैं सोचूंगा, कौन लाएगा वो मन में सोचा पहले से ही, क्रूर जी लाएंगे, क्रूर जी से कहूंगा कि वो सब छल से काम करना है, तो अमीन लोगों को लाने को कहूंगा तो इनके जाने पर नंद ब्रज में कौन आएगा इनके सामने, कौन भेंट करेगा, सब मिल करके मार देंगे वहां पर, जाते ही कोई लाने दूसरा जाए अक्रूर जी के अलावा, ये आया आया कौन सा भेजा हुआ असुर, फिर किस बड़ा मार डालेंगे तो किसी के द्वारा वो आ नहीं सकते, वो सोच लिया इन लोगों के द्वारा बुलाना ठीक नहीं, लेकिन कहा कि जब ठीक तरह से वे आ जाएंगे तब उन दोनों का हनन करो मथुरा में हनन। मञ्चः क्रियन्तं विविधा मल्लरंग परिश्रितः, तो इस महान उत्सव के लिए, फेस्टिवल के लिए पूरा एक स्टेडियम बनाया जाए कुछ समय के लिए, और विविध मंच बनाए जाए, मंचा विविधा क्रियंता, विविध प्रकार के मंच बनाए जाए, ऊंचा नीचा, एक तो गोलाकार सभा बनाई जाएगी स्थल पे, जैसे स्टेडियम होता है आप लोगों ने देखा होगा, नीचे सीढ़ी होती है उसके बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, और उसमें भी कोई कोई मंच राजा के बैठने के लिए, सरकारी आदमियों के बैठने के लिए, मुष्टिक चारूण आदि के बैठने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा इसलिए विविधा मंच कह रहा है, विविधा मंच, मंत्री लोग जहां आकर के बैठेंगे और नगर के भी, नगर पालिका के बड़े बड़े लोग जहां बैठे मथुरा जी के, और देश से भी बड़े बड़े नेता आएंगे, उनके लिए कुछ विशेष आसन होना चाहिए, और इतना बैठने की व्यवस्था हो कि जहां पर सारे लोग बैठ सके, पौरा जानपदा सर्वे पश्यंतु स्वैर संजुगम, ऐसे बनाओ और कहीं से बैठा हुआ व्यक्ति अखाड़ा पर दृष्टि डाले, अखाड़ा था नीचे जमीन पर ही अखाड़ा था, तो मंच विविध करने के लिए कह रहा है, तो कौन कहां बैठाए होंगे तो जो बैठे होंगे वही जानते होंगे, सब करो तुरंत करो, पूरा सरकारी पावर लगा दिया उसको खड़ा करने में, बनाने में, रातों रात सब तैयार, विविध प्रकार के मंच, मंच केवल बैठने के ही नहीं थे, कहीं कहीं आराम से गद्दी और तकिया लगा हुआ था, उस पर बैठ करके कुछ लोग देख रहे थे, वही जो राजकीय पावर वाले थे वे सब, उसमें नंद बाबा भी आएंगे, नंद बाबा बैठेंगे, भगवान के सखा गण आदि आएंगे, तो इनके लिए भी वो ठीक से बहुत अच्छा बनवाया था, थोड़ा जोग माया ने सब कुछ अच्छा करा लिया था, कौन से जहां सखा लोग बैठे थे, और तो सब बहुत बड़ी सभा होगी, तो जहां स्वैर संजुगम पश्चिम, तो सब लोग ये देखें, ये प्रीति का दंगल था, अपने जहां सब लोग ये देख सके, ये तमाशा, आज भी दंगल देखने के लिए बहुत लोग जुटते हैं, तो ये प्रेम का दंगल होता है, लेकिन ये बहुत घातक दंगल था जिसमें भगवान को मारने की योजना थी, तो मंचा क्रियंतम विविधा मल्ल रंग परिश्रिता, और मंच की क्या विशेषता बता रहे, मल्ल रंग परिश्रिता, मल्ल रंग, मल्ल उत्सव, मेला कहिए या उत्सव कहिए, से परिश्रिता, सब जगह ऐसी ऐसी चीजें सजाई जाए जिससे वो पहलवानों का लड़ने में उत्साह बढ़े, झंडा टांगा हुआ छोटा छोटा जहां तहां, झंडा लेना ही एक उत्सव करने का जिम्मेवारी समझा जाता है। किसी किसी जग के लोग उन लोगों ने झंडा लिया है, उन लोगों ने झंडा लिया है ऐसे कहते हैं। तो सजाए गए थे कपड़े आदि सब ऐसे बनाओ, रातों रात तैयार कर देना है, यह ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक सब पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि परसों कृष्ण बलराम आएंगे। इस तरह से भेजेगा अकूर जी को। इसके बाद इनसे जिम्मेवारी सौंपने के बाद अब हाथियों के सरदार, हाथी हाँकने वालों का सरदार को बुलाया, महामात्र जिसको चुन लिया गया था कि यही कुबलया पीढ़ी को चलाएगा, अथवा पहले से ही कुबलया पीढ़ी को वही चलाता था, वही उससे युद्ध करवाता था, उसको बुलाया। महामात्र त्वया भद्र रंग द्वारे उपनीयता, हे महावत जी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप कुबलयापीढ़ी नामक हाथी को रंग द्वारी उपनीयता, रंग द्वार पर लाइए, उसे लाया जाए, गेट पर ही जहां प्रवेश है उस सभा में जाने के लिए वहीं खड़ा करने को कह रहा है, ठीक बीच में। अगर कृष्ण बलराम आवे तो वो उनको प्रेरित करके मार, कितने दुष्ट लोग थे, रात दिन केवल यही सोचते रहते थे कैसे कृष्ण का वध कर रहे। तो रंग द्वार पर रखिए, ऐसा न हो कि उनके आने के बाद लाना चालू करो और सभा में प्रवेश कर जाए। सभा मल्ल युद्ध के लिए हो रही है और जो मुख्य मल्ल युद्ध करने वाले हैं कृष्ण बलराम, उनको सभा में के द्वार पर ही खत्म करने की योजना बनी। तो मल्ल द्वारी उपनीयताम और जही तेन ममा हितव, उसी से मेरे दोनों शत्रुओं का वध कर दीजिए। कंस बहुत डरता था कृष्ण बलराम से, हो सकता है कि सभा में न मार पाए, वहां तो प्रवेश करेंगे गेट पर तो मारने में सहूलियत रहेगी, और वो भी हाथी। तो वर्णन ऐसा है कि जब कृष्ण बलराम गए रंग द्वार पर तो महावत हाथी को ऐसे सीधा तिरछा खड़ा कर दिया, द्वार अवरोध किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे महावत, हाथी को थोड़ा बगल में करो, और गेट पर हाथी रखा जाता है लेकिन गेट के बाद में उसे सजाया जाता है या कुछ किया जाता है, उछल किया था, शुभ यज्ञ हो रहा है ना, तो यज्ञ में जल यात्रा होती है तो उसमें हाथी आता है, देखते हैं तो हाथी को द्वार पर खड़ा किया जाता है मंगल के लिए, सूर्य के लिए, लेकिन द्वार में भीतर ऐसे तिरछा नहीं खड़ा कर दिया जाता है कोई जाए आवे में। उसको तो ट्रेनिंग था, कंस का अनुशासन था, टेढ़ा खड़ा कर दिया था। भगवान आए तुमको कोई बुद्धि है हाथी खड़ा करने की, हाथी ऐसे खड़ा किया जाता है, हाथी को हटाओ बगल में करो नहीं तो तुमको और हाथी को दोनों को जमराज के यहां भेज दूंगा। वो तो क्रोध से तिल मिला गया। भगवान ऐसे विनय पूर्वक नहीं बोले, बोलते हैं बहुत मधुर लेकिन उस महावत से बहुत कठोर बोले, हाथी के साथ जम लोग भेज दूंगा, हाथ में कुछ नहीं है, छूछे हाथ हैं दोनों भाई। तो श्री बलराम जी चुपचाप थे साथ में और भगवान बोल रहे थे चलो हटाओ, हाथी को हटाते हो कि नहीं। इतना सुना तो हाथी पर अंकुश मारा, प्रेरित किया कि दुष्ट को मार दो, तुम इतना खोल, जितना सुना था उससे ज्यादा बदमाश, ये सब असुरों को मारते मारते इसका मन बढ़ गया, हाथी को प्रेरित किया और चला कृष्ण को मारने के लिए। तो लेकिन वो तो लीला आप कहने पर फिर देरी होगी, कैसे कैसे मारे भगवान, कैसे चल। एक बार दांत मारा, भागते भागते कृष्ण गिरने की नकल किए, ना ही बाप ऐसे कह करके विकराल पर्वत के समान हाथी आ रहा था तो भय की लीला किए भागे भागे तो गिर गए, गिरने का बहाना किया तो हाथी जोर से अपना दोनों दांत मारा कृष्ण पर, कृष्ण पर दांत मारा, तब तक कृष्ण वहां से हट गया, फर्श पर चरण से बहुत जोर से दांत लगा, दांत में बहुत पीड़ा हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाथी का दांत हिल ही गया होगा, न जोर से मारा था। इसके बाद भाग करके कृष्ण उसके चारों चरण के बीच में हो गए, बड़ा हाथी था कृष्ण छोटे थे, तो वो पहले तो देख नहीं पाया, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके साइज के अनुसार आंख नहीं होती है तो वो देखने लगा इधर से उधर, कहां गया कहां गया, तो ऐसे वो सूंघ रहा था सूंड से, कृष्ण के शरीर से दिव्य कमल की सुगंध थी, वो समझ गया इसी में, वैसे सब कृष्ण जहां भी रहते थे तो सुगंध निकलती रहती थी, सुगंध से वो सूंघ लिया कि इधर है, तो इधर से हट करके दाएं तरफ बाएं सूंड से पकड़ना चाहता था, कृष्ण इधर आ जाते थे तो फिर उधर से पकड़ना चाहता था और ऐसे पकड़ नहीं सकता था, पीछे खड़े हो जाते थे, वैसे वैसे करते करते वो बड़ा हाथी तबाह हो रहा था कृष्ण फुर्तीले शरीर वाले मिल नहीं रहे थे। कृष्ण इसके बाद बाहर आए, नहीं ये पहले की लीला है, कृष्ण हाथी के सूंड के ऊपर ऐसे मुक्का मारे, उतने ही छोटे शरीर वाले लेकिन मुक्का मारे और मुक्का मार करके भागे थे, तब हाथी दांत से मारा, इसके बाद तब ये आगे पीछे, इसके बाद श्री कृष्ण पूछ पकड़ ली पीछे निकलकर, और पूछ पकड़ करके हाथी दाएं होता था तो बाएं होते थे और बाएं होता था तो दाएं हट जाते थे, पूछ पकड़ कर ऐसे चलाने चलाने में आधा तो मर गया, बेदम हो गया हाथी, भारी शरीर, इसके बाद पूछ पकड़ करके खींचने लगे, श्री बलराम जी आए कहते तुम पूछ छोड़ो मैं पूछ पकड़ता हूं, तुम सूंड पकड़ो, कृष्ण सूंड पकड़े, सूंड और बलराम जी पूछ पकड़े, दोनों लगे खींचने से ऐसे तो अंत में गिरा दिए, गिरा दिए, इसके बाद दोनों भाई जाकर के दोनों दांत उखाड़ लिए, उनके मुट्ठी में आना कठिन था मोटा मोटा दांत बड़ा बड़ा था, ये भी दोनों उखाड़ लिए था, और उसी से हाथी को पीट और महावत को भी एक ही बात तो मारे बस वही खत्म हो गया, महावत मारा गया हाथी मारा, गेट पर एक घटना हुई, वो हादसा छा गया, बाप रे बाप, जो लोग ये सुने थे कि कौन इस अभिप्राय से बुलाया है, अब उनका तो उत्साह टूट गया, और सभा में और खुशी छा गई, जो देश की जनता थी और मथुरा जी की, वो तो बहुत खुशी में हो गए, बहुत खुशी में हो गए, और नंद बाबा और ग्वाल बाल सब जा करके जो रहते कृष्ण बलराम जी कहाँ हैं, वो और सब लीला करते हुए आ रहे थे, ये लीला उनको करनी थी तो या अगर नंद बाबा को क्यों आगे भेज दिए, नंद बाबा हाथी के बध में बाधा देते, कहते छोड़ जब नहीं जाने दे रहे थे लौट जाए ब्रज में, तो क्या जरूरत है जाने की, हो सकता है नंद बाबा आज्ञा दे देते, वो हाथी हटा नहीं रहा था, तो अगर लड़का जिद करे गाली दे तो नंद बाबा को पसंद नहीं, वो कहते कि थोड़ा हो गया हम लोग ये तमाशा नहीं देते, चलो मथुरा चलो चलो ब्रज में लौट जाए, इसीलिए कृष्ण पहले नंद बाबा को भेज दी जिससे कि रास्ता साफ रहे इसको मारने का, तो आप जरा विचार कीजिए हाथी मरा होगा तो कैसा कोलाहल छाया होगा, जो श्री कृष्ण के भक्त थे कितना प्रसन्न हुए होंगे, अधिकांश तो भक्त ही थे, केवल कृष्ण के केवल कंस के कुछ आदमी थे जो दुखी हुए, और हाथी दांत जिसमें टप टप खून चू रहा था और हाथी दांत निकालने में खून चुआ था, कभी पीताम्बर पर लगा था, कछनी पर लगा था, श्री विग्रह पर, मुख पर, और हाथी दांत लिए थे, टप टप खून चू रहा था। दोनों भाई इसी रूप में कंस के रंगशाला में प्रवेश किए। प्रथम बार कोई हथियार लेकर के आए। ब्रज में तो केवल बांसुरी लेते थे, डंडा लेते थे गाय चराने के लिए, लेकिन अब हथियार लेकर के घुसे। तो हथियार नहीं था, मानो ये दोनों ये भाव व्यक्त कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, इतना बड़ा धन मिला, हाथी का दांत मिला, ले जाएंगे अपने गांव ब्रज में, ले जाएंगे, रखेंगे इसको। वो सुनते होंगे कि हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है। तो ये सब लीलाएं बाद में आएंगे। महामात्र से महावत से कह रहा है तो या भद्र, यह पहले वो सोचा कि अपने प्रिय पहलवानों को श्रम क्यों दूं, उनसे क्यों युद्ध करने के लिए कहूं, और यह भी डर लगता था हो सकता है कि दोनों खतरनाक कृष्ण बलराम इनका वध कर दे, इसीलिए सोचा कि हाथी द्वारा ही मरवा ले। अहो किंग प्रिय तमाना मल्ला नाम श्रमोत्पादन मत हस्तिना एव सुखम तत्साध्यम इति बहिर्व्यंजन अंतस्तु विभ्य देव आह। कंस भीतर से डर रहा था, वो चाहता था कि नहीं, अगर ये काम बाहर ही हो जाए तो ठीक है, बाहर रंगशाला में आने पर वो भी डर रहा था, हम भी मर सकते हैं, पहलवान भी मर सकते हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पहले सोचा है। द्वार पर ही सब तमाशा खत्म हो जाए तो ठीक है, बहुत डर रहा था, इसीलिए महावत को कहा हे भद्र, हे चतुर, हे हस्ति नियंत, त्वया रंग द्वारी कुबलया पीड़ द्वीप उपनीयता। हाथी को द्वीप कहते हैं, दो बार पीता है, दो बार जो पिए उसको द्वीप कहते हैं, एक बार सूंह में पानी लेता है, एक बार ऐसे पीता है, दूसरी बार मुंह में पानी लेता है, तो दो बार पीता है तो द्वीप कहते हैं। हाथी का यह स्वभाव है, सूंह से पानी लेता है और मुख में डालता है, उसको द्वीप कहते हैं। कुबले अपील हाथी को लाओ कहां, रंग द्वारी, क्या दुष्टता है, रंग द्वार पर रखो, और इसके बाद और कोई आवे तो बगल में कर देना, और जो सभा में आवे कोई भी आवे तो ठीक है साइड दे देना, जो कृष्ण बलराम आवे तो अड़ा देना हाथी को। ये सब साजिश पहले की थी, ये सोचा कि आखिर किस बहाना से सब फेस्टिवल मेला रचा जाए। आरभ्यताम धनुर्जाग चतुर्दश्याम यथा विधि विशसंतु पशु निध्यान भूत राजा यमेडु से, न केवलम लौकिक एवं उपाय कर्तव्य किंतु दैव अपि क्रियताम जेन तन मूल तेन मूल को सरे मल क्रीड़ा दर्शन व्याजेन तौ अपि आनेयौ स्यातम इति आशयना। तो केवल लौकिक उपाय ही नहीं करना है, वैदिक क्रिया भी करनी है, और उस वैदिक क्रिया को ही बहाना बना करके मल्ल क्रीड़ा का बहाना किया जाएगा। देवता के का दिन है, शिवरात्रि है, चाहे कोई पंचमी है, कुछ है, जैसे हनुमान जी का पर्व हो तो अखाड़ा में पहलवानी कराई जाती है, तो ऐसे सोचा कि धनुष यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ के नाम पर फिर पहलवानी होगी, इस बहाने से उनको मारा जाएगा। तो कहा चतुर्दश्याम जथा विधि धनुर्जाग आरभ्यताम, डेट तुरंत बताया, तुरंत प्रिंट किया गया होगा उसी समय सारा, या लिखा गया होगा यहां पर। चतुर्दशी के दिन ये मुख्य मेला का सेंट्रल डेट है, डे है चतुर्दशी, उस दिन चालू करो धनुष यज्ञ और मीढ़ुसे भूत राजाय भगवान शिव भूतेश्वर कहे जाते हैं, वो कहा कि भूतराज को भूतेश्वर को जो मीढ़ुस है मीढ़ुस से इष्ट वर्षिण जो सारी कामनाएं पूरा करते हैं ऐसे शिव जी के लिए मेध्यान पशुन पवित्रान पशुन विशेषंतु। शास्त्र में कुछ ऐसे पशु माने गए हैं जिनको यज्ञ में डाला जाएगा और नए पशु बना दिए जाते हैं, तो ऐसे कौन से उल्लेख करे कि ऐसे पशु उनको बलि दिए जाए। विशेषंतु छिक्वा जजंतु इति आज्ञाप्य अर्थतंत्रज्ञ अर्थतंत्रज्ञ कंस। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंस केवल द्वितीय पुरुषार्थ को जानता था, पहला पुरुषार्थ और तृतीय पुरुषार्थ चौथे पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं जानता, भोक्का था, केवल रुपया पैसा कमाना जानता था, अर्थतंत्रज्ञ था, इकोनॉमिक्स जानता था, या केवल व्यापार पैसा कैसे इकट्ठा किया जाएगा कैसे चलाया जाएगा बस इसी का ज्ञाता था। अर्थतंत्रज्ञ अर्थ द्वितीय पुरुषार्थ तत्र तंत्रम सिद्धांत अर्थ का ही तंत्र था, मतलब रुपया पैसा इकट्ठा करना और भोगना यही जिसका सिद्धांत हो उसको अर्थतंत्र कहते हैं। किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए और ज्यादा दिन जीना चाहिए और जी करके खूब अच्छा से खाना पीना चाहिए, बस यही जिसका उद्देश्य हो सिद्धांत हो उसको अर्थतंत्रज्ञ कहते हैं। अथवा अर्थ के तंत्र मतलब शास्त्र अर्थशास्त्र को ही जानता था और कुछ से मालूम नहीं था। अर्थशास्त्रम मतलब धर्म धर्मादि शास्त्रम जानाती थी, अर्थशास्त्र जानता था धर्मादि शास्त्रम धर्म शास्त्र नहीं जानता। अर्थ कमाना तो ये सब बात बता करके प्लान करके इस सभा में कर रहा है, वास्तव में उसे एकांत में करना चाहिए था, जो भी है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो तत्र तस्मिन् एव स्व परिवार गोष्ठी मध्य तत्र अब ये सब मंत्रणा करके वो अर्थतंत्रज्ञ कंस तत्र उसी परिवार की गोष्ठी के बीच जदुपुंगवम अक्रूरम आहूय पाणिना पाणिम गृहीत्वा ह स्फुटम क्लियर उवाच कथयामास। उसी सभा में जिसमें कई लोग भरे पड़े थे अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी जब आए तो कंस खड़ा हो गया, राजा था लेकिन अक्रूर जी का आदर करता था, अक्रूर जी महामंत्री थे। अक्रूर जी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, भगवान के परम भक्त हैं, सारे जादव तो भाग गए थे कंस के अत्याचार से लेकिन अक्रूर जी कंस के साथ ही मथुरा में रह रहे थे। जगत नहीं नहीं रास्ता नहीं बोले कैसे उठ करके इधर से गए क्या हैं? अच्छा तो रास्ता भूल गए, रास्ता दे दीजिए वो भूल गए हैं तुम लोग। तो अक्रूर जी कंस के साथ ही रहते थे, कंस के विश्वास भाजन थे और ये रह रहे थे वसुदेव आदि जादवों के रक्षा के लिए और श्री कृष्ण इस निकट ब्रज में ही रह रहे हैं इसलिए कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा थी, जानते थे कि कृष्ण एक न एक दिन मथुरा आएंगे और उनके साथ रहने को मिलेगा, तो इसलिए ये देश का त्याग करके इधर उधर नहीं गए, मथुरा में ही रहते थे और ऐसे कुशल नीतिज्ञ थे कंस को पता नहीं चला कभी कि ये कृष्ण का भक्त है या जादुओं का पोषक है। इसलिए इनको जदु पुंगवम कहा गया, जदुओं में कुशल श्रेष्ठ सब माने में अक्रूर जी थे, और इतने सीधे साधे थे कि इनका नाम ही था अक्रूर, जो क्रूर नहीं है, क्रूर नहीं है, कठोर नहीं है, कोमल है, अक्रूर नाम था। इनसे उठ करके कंस सभा में जब आए तो उठ करके अपने सिंहासन के पास से थोड़ा एक दो कदम चल करके गृहीत्वा पाणी ना पानी हाथ मिलाया, पानी ग्रहण किया, हाथ मिलाया, यह अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। उवाच ह, ह का अर्थ है स्फुट, क्लियर खोल करके बोला कंस, जो पहले बात बोला था वही सब क्लियर बोला। भो भो दान पते मह्यम क्रियतम मैत्रमादृत, हे दान पति, हे दान वीर, अक्रूर जी का नाम दानपति हो गया था, एक ऋषि के पुत्र थे स्वफल्क जी के, और इनकी मां वाराणसी की थी, गांधी। तो जब समंतक मणि की चोरी गई, चोरी हुई, और सुधन्वा था ना, धन का था वो, कौन चुराया था समंतक मणि? सत धनवा। तो मणि को अब छिपाना चाहा, क्योंकि मणि मिल जाती तो हत्या का भी पता चलता है, बहुत तो इसको मारा जाता, जान से मार दिया जाता। तो ये मणि को छिपाने के लिए कृतवर्मा के पास आया, कृतवर्मा और अक्रूर जी दोनों क्षाए थे उसको सत्राजीत के वध के लिए। तो कृतवर्मा जवाब दे दिए नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, और खबरदार नाम मत लेना कि हम कुछ कहे हैं, हम कुछ कहेंगे तो तुम सब करोगे, क्या हमारे कहने से तुम कूदोगे, हम क्या जानते थे कि इतने मूर्ख हो तुम, ऐसे वध करोगे कि पता चल जाएगा, हमारा नाम मत लेना। तो वहां से भागा, वे अक्रूर जी के पास आया, अक्रूर जी से कहा कि हमारी रक्षा कीजिए, कृष्ण बलराम से आप लोगों ने कुछ हमें इंस्टिगेट किया, उकसाया, मैंने चोरी किया और हत्या किया, आप हमें बचाइए। अक्रूर जी कहे तुमको पता है 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत में उठाए थे, मैं क्या कहा था कि तुम कृष्ण से द्रोह करो, हमने कुछ भी नहीं कहा था सत्याजीत आदि के विषय, अब ये लोग उकसाए थे पहले और अब नाम नहीं ले रहे। तब वो सत्याजीत जो सुधनवा जो कपड़े में लपेट करके मणि लाया था वो उनके घर में फेंक दिया और चला गया। तो अक्रूर जी उस मणि को जो अरबों खरबों रुपये की मणि थी रख लिए, और ले करके चुपके से अटैची में चाहे जैसे बनारस भाग गए, और ये द्वारका से बनारस चले गए। हैं? ये स्पेशल कांड है, ऐसी बात नहीं है कि आखिर अब क्या कहां छिपा रहे हैं। समंतक मणि को रखने पर पता चलता कौन रखा है, तो कौन रखा है उसके द्वारा फिर हत्यारे का पता चलता है, ये होता है वो होता है, सारा सीबीआई जांच होती तो वो वाराणसी में चले गए, और वहां जाकर को 85 किलो सोना रोज उगलता था वो मणि, तो उस सोने से लगे यज्ञ करने, ब्राह्मणों को दान देना, खिलाना, फूड फॉर लाइफ चलाना, सब खूब करने लगे, दीन दुखियों को खिलाना, दान देना, तो इनका नाम ही हो गया दानपति, प्रसिद्ध हो गए दानपति। तो ये तो बहुत पहले की घटना है, अरे बाद की घटना है, और कौन से इनको दानपति कह रहा है तो एक और कारण से कह रहा होगा, ये शुरू से ही दान देने में तेज रहे होंगे, वहां भी मथुरा में रहते समय भी। तो जब जब इनको संबोधन आया है तो दानपति, महाराज धृतराष्ट्र अक्रूर जी के प्रवचन को सुने, सलाह को, कहते दानपति जी आप ठीक बोलते हैं, लेकिन मेरा हृदय इतना पुत्रानुराग में विषम है कि आपके वचनामृत इसमें ठहर नहीं रहे। आप ठीक बोलते हैं लेकिन हमारा हृदय फूटा हुआ है, यह पुत्रानुराग विषम है, जैसे अमृत किसी बर्तन में रखा जाए फूटे हुए बर्तन में और चू जाए, वैसे आप तो बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन सब चू जाता है। तो अक्रूर जी ने कह दिया तब तो आपके पुत्रों का विनाश होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। यही करने के लिए तो भगवान अवतार लिए हैं, धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं। मैं जानता हूं कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुवंश ने अवतार लिए हैं, तो ये होना ही है, जो होना होगा। ऐसे धृतराष्ट्र महाराज बोले, तो वहां वो दानपति कहे, यहां पर कौन से दानपति कह रहा है, आप मेरा आदर कीजिए, मेरी बात को श्रद्धा से सुनिए, आप हमारे साथ एक हितैषिता कीजिए, मित्रता कीजिए, मैत्रम, मैत्रम मतलब मित्र का काम, एक हमारे हितैषी, हमारी हितैषिता कीजिए, और नान्य तत्व हित तमो विद्यते भोज वृष्णि, भोज और वृष्णि वंश में आपके समान मेरा हितैषी कोई नहीं, मेरा हित करने वाला कोई नहीं, और आप मेरे प्रति आदर भाव रखते हैं, आप हमारे हितैषी भी हैं, अतस्त्वाम आश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम जथेन्द्रो विष्णु आश्रित्य स्वार्थम मध्य गमत विभु, अतः मैं आपका आश्रय लिया हूं। हे सौम्य, ये अक्रूर शब्द का ही पर्यायवाची बोल रहा है, हे सौम्य, हे अक्रूर मतलब नाम रखने में सीधा शायद अंशित मान रहा है, आदर दे रहा है, तो इसीलिए सौम्य कह रहा है। सौम्य का अर्थ है चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, और भगवान सूर्य को क्रूर कहते हैं, क्रूर किरण जिनकी कठिन किरणें हैं, सूर्य को क्रूर भी कहा जाता है और चंद्रमा को अक्रूर कहते हैं। सोम से सौम्य संबोधन कर, हे चंद्रमा के समान सुशीतल स्वभाव वाले, आपके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है, आप हमारा एक काम कीजिए, इसलिए मैं आपका आश्रय लिया हूं, आप हमारे हितैषी हैं। ऐसे मैं राजा हूं, भोजवंश का बड़ा व्यक्ति हूं, फिर भी आप जैसे छोटे व्यक्ति का मैं आश्रय ले रहा हूं, और जैसे इंद्र समर्थ होते हुए विष्णु का आश्रय लेते हैं। कहा नहीं कि आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं, लेकिन इसके उक्ति से सब पता चल गया, बोलने पर ही किसी का पता चलता है कि आदमी कैसा है। कंस की वाणी ऐसी निकली कि जैसे विभु इंद्र, समर्थ इंद्र भी विष्णु का आश्रय लेकर के अपना काम पूरा करते हैं, उपेंद्र का आश्रय, इसी तरह से मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। हरीशुरी जी एक उक्ति में कहे हैं कि अग्नि बहुत शक्तिशाली देवता है प्रकाश देने में, ताप देने में, लेकिन उनको भी, ये कर्ण से ही कह रहा है, उनको भी अग्नि को भी एक छोटे से कपड़े के टुकड़े की जरूरत होती है प्रकाश देने के लिए। दीपक में तेल भी है, ठीक है, और अग्नि में शक्ति है प्रकाश देने की, लेकिन जब तक उसमें बाती नहीं लगाई जाएगी तब तक वो आग जलेगी नहीं, अग्नि जलेगा नहीं तो प्रकाश नहीं दे सकता। जैसे अग्नि समर्थ है लेकिन फिर भी एक कपास से बनी हुई वर्तिका का बाती का आश्रय लेता है, तब प्रकाश देता है। इसी तरह से मैं समर्थ हूं फिर भी आश्रय की जरूरत है, बिना उस बाती के अग्नि प्रकाश नहीं दे सकता। जैसे इंद्र विष्णु का आश्रय है, क्या महिमा है इंद्र की। अब देखिए कौन से जैसा आश्रय बोल रहा है कि इंद्र विष्णु का आश्रय लिया है। तो इंद्र एक भक्त है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति चुगेति। इंद्र की शत्रुओं से सताए हुए लोक को सुखी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इंद्र जैसे विष्णु का आश्रय लेते हैं, ऐसे मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। मतलब आप विष्णु हैं, वैष्णव हैं, तो सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं ठीक ही है। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, चार नाम है लेकिन ये कहीं है। तो आप तो विष्णु हैं ही, विष्णु से ही वैष्णव शब्द बना है, और मैं इंद्र जैसा हूं ही समर्थ। ये अभिमान है। इस तरह से उपमा भी देते समय सोचना चाहिए कि क्या उपमा दे रहे हैं। ये भयभीत था लेकिन अहंकार टपक रहा था, इसे तो इंद्र भी भय लेकर भयभीत रह करके ही तो विष्णु का आश्रय लेते हैं। इंद्र यथा विष्णु आश्रित स्वार्थम स्वाभीष्टम प्राप्तवान तथा अहम अपि कार्य गौरव साधनम कार्यस्य गौरवम गुरुत्वम तस्य साधनम गुरु प्रयोजनम साधितुम इति अर्थ कि वह कार्यम गौरवेण गुरुतया साधयति इति तम त्वाम आश्रित ममात्र बंधुषु मध्ये त्वतो अन्यो नैपुण्येन कार्य साधक कोऽपि न अस्ति इति अर्थ। कार्य गौरव, कार्य की गुरुता को साधने वाले आप साधन हैं, आप काम कर सकते हैं, इसलिए मैं आपका आश्रय दे रहा हूं। पहले ये बताया कि मैं आपका आश्रय लिया हूं, आप पर विश्वास करता हूं, आप हमारा हित करने में लगे रहते हैं, निपुण हैं, ये कह करके तो कार्य बता रहा है। ये काम करना है। गच्छ नंद ब्रजम, नंद ब्रजम गच्छ। आप नंद का ब्रज जानते हैं ना, मैंने बताया होगा। हाँ, नंद गांव को संकेत किया होगा, यहां पता है। वही जो गौओं के इंचार्ज हैं, जो बहुत गाय रखे हैं, ये भी अनजान जैसे शुरू शुरू में बोल। नंद ब्रज में जाइए तो पूछते नहीं थे लेकिन अपने आप को संभावना करके कि पूछेंगे वहां क्या प्रयोजन है, क्या जाने का उद्देश्य। तत्र आनक दुंदुभे सुतव आशा पे, वहां नंद ब्रज में आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र हैं, वसुदेव के दोनों पुत्र हैं। सब नारद जी के सिखाने से बता रहा था, नारद जी पर विश्वास था कि मृषा हो इन देव ऋषि वाणी। देव ऋषि की वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती, मृषा न हो देव ऋषि वाणी। तो नंद ब्रज में वसुदेव के दोनों पुत्र हैं। तौ इह आनय अनेन रथेन, अनेन रथेन, वहां रथ खड़ा करके बात कर रहा है, दिखा कर रहा है, या वो तुरंत मंगा लिया होगा सोच करके कारखाना से फैक्ट्री से खड़ा है। इस रथ से अनेन रथेन दिखा करके कह रहा है, अनेन रथेन इस रथ से तौ इह आनय मा चिरम, कब जाना चाहिए, यथाशीघ्र जाना चाहिए, जो सुविधा समझे। रात्रि के समय बात हो रही थी, एकादशी का उपवास किए थे अक्रूज, यथाशीघ्र जाइए। अनेन रथेन रथ दिखा करके कह रहा है, तो अनेन रथेन से तात्पर्य यह है कि ये जब इतना सुंदर रथ जाएगा गांव में, और हीरो के उस गांव में ये रथ जाएगा, इस पर कौन नहीं चढ़ने के लिए चलने के लिए तैयार है, जहां के लड़के बैलगाड़ी का पिछला बांस पकड़ करके झूला करते हैं, ऐसे लड़कों को रथ मिले चढ़ने के लिए जो क्यों नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा कृष्ण बलराम बैलगाड़ी पर चढ़े हैं, ये कई बार उल्लेख है, बैलगाड़ी पर चढ़े थे तो उनको ऐसा सुंदर घोड़ों से जुता हुआ रथ मिले चलने के लिए तो वे क्यों नहीं आएंगे। तो इसलिए भी कह रहा है कि इस रथ को भी देख करके इस पर आरोहण करने की लालसा हो जाएगी कृष्ण बलराम। इस रथ को ले जाइए, इस रथ से जाइए। और क्रूर जी उस रथ पर गए, लेकिन भगवान जिस पर बैठेंगे, जिस आसन पर, उस पर कभी बैठे नहीं, वो तो सारथी बन करके जा रहे जाएंगे, सारथी बैठता है वहां बैठ करके जाएंगे। तो दोनों हैं यहां पर और आप जाइए, काल विलंब मत कीजिए, यथाशीघ्र जाइए। बार बार दो बार आया ना, अनक दुंदुभी के पुत्र, अनक दुंदुभी के पुत्र, तो वहां क्या कार्य करना होगा, वो हाँ कैसे लाएंगे, कृष्ण बलराम को लाएंगे, क्या बात है सरकार की आज आप उनको रथ भेजकर बुला रहे। ऐसा है कि निसृष्ट किल में मृत्यु देव ही वैकुंठ संशय, विष्णु का आश्रय लेने वाले देवताओं ने मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथ से निश्चित किया, उन दोनों के हाथ से निश्चित किया। ये भी ठीक से बोल रहा है, जानता है कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कृष्ण को अकेले लाने में हो सकता है भाग जाए, ना आए अपने भाई के स्नेह में, इसलिए बलराम जी को साथ में कह रहा है कि इन दोनों के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित किया है देवताओं ने। मृत्यु निश्चित क्या किया है कि देवताओं ने मिल करके विष्णु से सिफारिश किया है कि आप कंस का वध कीजिए। उनको तो हिम्मत नहीं है मेरे पास आने की, पर इन सब लोगों ने मिल करके विष्णु की खुशामदी करके उसको राजी कर दिया है कि वो मारने के लिए तैयार हो गया है, और वो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के आया है। तो श्री नारद जी ने भी अभी अभी बताया, ये सारे देवता मिल करके जो विष्णु के भक्त हैं, ये लोग निश्चित किए हैं मेरी मृत्यु, मतलब किसके हाथ से, दोनों के हाथ से निश्चित किए हैं, दोनों को प्रेरित किया, इंस्टिगेट किए हैं कि ये हमारा पद करें। तो आनय समम गोपई नंदादेश अभिपायन, शायद दोनों लड़के नहीं आएंगे अकेले दोनों, तो आप एक काम करना, आप नंद आदि को मेरा निमंत्रण दीजिए, गोपों को, नंद प्रधान गोपों को मेरा निमंत्रण दीजिए। बड़े आग्रह से राजा कंस ने बुलाया है और सब लोग अभिपायन के साथ आवे, दधि, घृत, दूध, जितना हो सके, वहां तो अपार उन लोगों के पास तो यही है सब तरह से, तो जाकर कहिएगा कि सब आवे और दूध दही, यहां आखिर एक साथ लोग जुटेंगे, वहां तो भोजन चाहिए ना, और भोजन बिना रस के, बिना दूध दही के किसी काम का नहीं होता है, ये बताया। तो ये इसलिए कि गोपों को प्रताड़ना के लिए, छल करने के लिए, वो लोग समझेंगे हाँ सच्चा लोग उत्सव है, सिर्फ भनक न मिलेगा कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुला रहा है। तो इसीलिए गोपों के साथ, नंद आदि गोपों के साथ बुलाइए, वे लोग भी आएंगे, और दूध दही घी खब सब ले करके आएंगे, इधर डलडा फलडा नहीं चलता था कुछ, पार घी, जहां घी दूध दही ठीक ठीक मिल जाए, तो भोजन में रस ही रस है। ये सारी बात इसलिए कह रहा है कि जिससे कि फेस्टिवल की सत्यता सिद्ध हो, इस खड़यंत्र का पता नहीं लगना चाहिए, बोल रहा है सभा में, तत्र उसी गोष्ठी में बोल रहा है। जैसे आजकल के जो भी परामर्श किए जाते हैं, मंत्री जो मंत्रणा देते हैं, वो सब संसद में बैठ करके देते हैं, और संसद की सारी कार्यवाही टेलीविजन पर दी जा रही है, मंत्रणा एकांत में करनी चाहिए। तो कंस बुलाया था, सारी सभा भरी पड़ी थी और इस सारी बात बता रहा है, कृष्ण बलराम के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित किए हैं देवता लोग, विष्णु का आश्रय ले, मैं देवताओं की तो खबर ले लेता लेकिन विष्णु के आश्रय में लोग रह रहे हैं और वो बहुत खतरनाक, वही आया है मुझे मारने के लिए। मतलब बताया कि ऐसा प्लान है, ऐसा है, तो तब आना या उन दोनों को लाइए गोपों के साथ और दही दूध आदि उपायन के साथ। तो क्रूर जी तो बहुत बुद्धिमान थे, उनका सरकार उनके उनके द्वारा जब मृत्यु है तो यहां क्यों बुला रहे हैं, जिसके जिससे मरण हो उसको अपने पास बुलाया जाए, ये कोई बुद्धिमानी है? लेकिन बड़े शालीन भाषा में पूछे, उनको यहां क्यों बुला रहे हैं? नहीं बुला रहा हूं, घात इससे यह नेता, जब दोनों को आप लाएंगे तो मैं यहां आने पर घात इससे मरवा डालूंगा, काल कल्पे न हस्तिना, किसी को पता नहीं चलेगा कि कंस मरवाना चाहता था, बस हाथी हाथी कलपे मतवाले हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, मैं हाथी से जो काल के समान बलवान है, कल्पन समर्थ, काल 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 के समान समर्थ है, उस हाथी से मरवा दूंगा यहां आने पर, आप केवल ला दीजिए बाकी हाथी द्वारा मरवा दूंगा। फिर भी इतना भयभीत था, कहा कि यदि मुक्त हो, यदि हाथी से दोनों मुक्त रह गए बच गए तो मल्लय मल्लय घाते पहलवानों से मरवाऊंगा, एक पहलवान लड़ लड़ करके कमजोर कर देगा कृष्ण को, दूसरा और कमजोर करेगा, तीसरा कमजोर करेगा, बहुत पहलवान अंत में मारे, है ना, पहलवानी जब होगी तो आखिर बच्चे थक जाएंगे, एक पहलवान दूसरा पहलवान और कंटिन्यूअस, इसीलिए मल्ला ही शब्द का प्रयोग कर रहा है, बहुत पहलवान रहेंगे और मल्लों से मरवा देंगे, ये वैद्युत उपमय, असमी तुंडे वज्र के समान हमारे पहलवान हैं सब, खा पी करके पहलवानी करके सब तैयार बैठे हैं ना, हाँ देख रहे हैं, अक्रूर जी देख रहे थे, तो महामंत्री थे ही, फिर ये सब वैद्युत उपमय पहलवान बैठे हुए हैं, सब मारेंगे, और तयोर निहतयोस तप्ता वसुदेव पुरोगमन, उन दोनों के मारे जाने पर वसुदेव आदि जो जादव हैं और इनके बंधु बांधव संबंधी, ये सब तप्त हो जाएंगे, दुखित हो जाएंगे, लड़ने का कहां उत्साह रहेगा इनमें, स्वयं पुत्रों के शोक में डूबे रहेंगे, तो इन सबको हनिष्या में कमजोर हो जाएंगे, कृष्ण बलराम के विरह में दुबले पतले रूप ढा करके मरने में आसान पड़ेगा, तप्त कह रहा है, ये सब दोनों के मारे जाने के बाद तप्त हो जाएंगे तो इनको मरवाऊंगा, उग्रसेनम च पितरम, तो क्रूर जी कहेंगे नहीं, उग्रसेन जी पिताजी हैं, वो प्रतिरोध करेंगे कि क्यों आप मार रहे हो बिना मतलब के, सब इसका नाम मत लीजिए, उग्रसेनम च पितरम, ये उग्रसेन जो मेरा बाप है, ये बूढ़ा हो करके भी राज्य कामुख है, बुढ़ावती में भगवान का भजन करना चाहिए, माला वाला लेकर के फिर वही मिनिस्टर बनना चाहे, खड़ा होने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, ये अस्थवीर है, अस्थवीर का अर्थ होता है जो बहुत दूर नहीं जा सकता, अस्थवीर का अर्थ होता है जो केवल आंगन में घूमे चाहे फुलवारी में इधर उधर, अब दौड़ धूप नहीं करेगा, केवल टॉयलेट चला जाए यही काफी है अस्थवीर। कभी कभी अपने बाप के स्वास्थ्य के परफेक्शन का वर्णन पुत्र करते हैं तो कहते हैं, अभी अपने बल पर शौचालय चल जालन, तो ऐसे अभी अपने से शौच उच कर लेते हैं, उन्हें बहुत ठीक है, बाहर जाने की कोई शक्ति नहीं, लेकिन अपने से नहा उहा लें यही काफी पुरुषार्थ है। ये बूढ़ा हो गया लेकिन इसका लोभ देखिए, अक्रूर जी वो सामने नहीं थे, बाप का लोभ देखिए, बूढ़ा हो गया फिर भी राजा बनना चाहते, राजा ही रहना चाहते हैं। ये बात उग्रसेन जी में थी, राज्य लालसा थी, इसीलिए भगवान ने कंस का वध करके उनको ही राजा बनाया, भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी की, भगवान उनके अधीन थे, उग्रसेन जी को राजा बनाया। तो उसको कंस कह रहा है उग्रसेन जी को, राज्य कामुकम, राज्य का काम, तद भ्रातरम देवकम च, उग्रसेन को तो मरवाऊंगा ही, उसका वध कराऊंगा, और उसके भाई अपने चाचा का भी वध कराऊंगा, उग्रसेन का वध कराऊंगा और उसके भाई देवक का भी वध कराऊंगा, उनकी बेटी का वध तो विवाह के दिन ही करना चाहता था, अब तक नहीं कर पाया। अब देवक का और भी अन्य मम दिश, और जितने भी मेरे द्वेषी हैं सबको मैं मरवाऊंगा। ततश्च ईसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका, तब यह पृथ्वी शत्रु शून्य हो जाएगी, कोई मेरा प्रतिरोध करने वाला, बाधा देने वाला नहीं होगा, मैं सुख से जीऊंगा, नष्ट कंटक पृथ्वी हो जाएगी, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, स्वच्छंद राज्य करूंगा। आप इस सब इतने लोगों का वध कैसे करा पाएंगे और कैसे नष्ट कंटक पृथ्वी हो? सब कह रहा, अरे हमारे ऐसे ऐसे सहायक है, आप तो जानते ही, आपसे क्या छिपा है, जरा संधो मम गुरु जीदो दैत सखा, मेरा हित करने पर, मुझे सफल बनाने पर, राजत्व मेरा कायम रखने के लिए सब समय जरासंध बाबा विचार करते हैं, जरासंध जी तैयार रहते हैं, ऐसे ससुर को बाबा कहते हैं, इसलिए मेरे मुख से निकल गए, जरासंध जी तैयार, बिहार के सिंह साहब, जरासंध सिंह, ये बिहार के थे जरासंध, राजगृह। और वास्तव में उस समय के जितने क्षत्रिय थे संसार में, वे सब जरासंध के अधीन थे। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जरासंध ऐसा राजा था जो राजाओं के मस्तक पर पैर देता था, पृथ्वी पर नहीं, कभी नहीं चला, एक प्रकार से मुहावरा है कि वो पृथ्वी पर नहीं चला, राजाओं के मस्तक पर पैर देकर के चलता था, नृप शिरोम ग्री इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राजाओं के सिर पर जिसका अंगरी रहता था, ऐसे बलवान जरासंध का वध जिन्होंने था कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा करा दिया, जरासंध पर इतना बड़ा भरोसा, ये संसार की स्थिति है, ये केवल कंस के लिए बात नहीं कही जाती है, जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय न लेकर के सोचता है कि हमारे इतने बड़े आदमी हैं, ये मिनिस्टर हमारा आदमी है, हमारे घर का है, हमारा ये है, हमारा स्वजान है, ये जो आश्रय करता है, भरोसा रखता है दूसरे का, उसके समान बेवकूफ कोई नहीं, ये सब किसी काम में नहीं आ सकते, ये सब भरोसा रखना आशा रखना बेकार है, चाहे वो खास परिवार का हो या संबंधी हो, तो किसी भी माने में किसी पर क्या भरोसा किया जा सकता है, कृष्ण के अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रयणीय नहीं, शरण नहीं है व्यक्ति। कंस की जो योजना बन रही है कि हमारे इतने आदमी हैं, अब जरासंध जी हमारे अपने हैं तो खास गुरु ही हैं, गुरु से तात्पर्य यहां ससुर है, मेरे बड़े हैं, मेरा हित करने पर पड़ेगा, और बड़े ससुर इतने बुलंद मिले हैं और फ्रेंड तो द्विध ही है, वो भी द्वैत सका है, मुझे प्यार करने वाला है, एक दांत की रोटी खाने वाला द्विध, जिसको बलराम जी ने मार के साफ कर दिया, मूसल से मारे उसके सिर पर मर गया, इतना भरोसा द्विध पर। और कृष्ण को मारने का प्लान, कृष्ण की उपेक्षा, कृष्ण की शरण नहीं लेना। तो इस तरह से जो लोग इन सांसारिक संबंधियों का या मित्रों का आश्रय लेते हैं तो वह निश्चित ही विफल होते हैं, क्योंकि ये सब काल के बस में है सब कुछ। उनकी मित्रता भी काल के बस में है, उनका देह भी काल के बस में है, जो भी सामर्थ्य सब कुछ काल के बस में है, इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है, आंख नहीं देखती है, बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन व्यक्ति भरोसा करता है हमारे ये हैं, हमारे ये हैं। विपत में साथी एक देवकी के लाल दिनवा पात्र हो गए, वास्तव में संकट में केवल कृष्ण काम आएंगे, केवल कृष्ण, यही बंधन है। पर व्यक्ति समझते नहीं, दूसरे पर भरोसा करते हैं। जरासंधो मम गुरु द्विदो दैत सखा, द्विद हमारा प्यारा मित्र है, और संबरो नरको बाणो, संबर नामक असुर जिसको प्रद्युम्न जी ने मारा, संबरासुर नरकासुर इसको भौमासुर भी कहते हैं, भूमि का पुत्र था नरक, और बाण बाणासुर बलि महाराज का पुत्र, ये सब मई एवं कृत सौहार्द मुझमें ही सौहार्द किए हैं, मेरे जीवन की रक्षा में सब तत्पर हैं, सब तत्पर है, सहारा देते, हमको देखते रहते कैसे कंस जी खुश रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, और कंस जी परसों अब खत्म होने वाले हैं, ये सब अभी रहेंगे देखते रह जाएंगे, जरासंध जी ससुर जी तो बाद में मारे जाएंगे राजस्वी यज्ञ में, और नरकासुर उससे पहले मारा जाएगा कृष्ण के विवाह रानियों के साथ विवाह, संबर प्रद्युम्न जी का जन्म होने पर उनके द्वारा मारा जाएगा, ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे ये मिनिस्टर हैं, हमारे ये मिनिस्टर हैं, ये इस तरह का भ्रम, इस तरह का अज्ञान, यह दुर्भाग्य है जीव का। कृष्ण के प्रति यही भाव करना चाहिए, हमारे कृष्ण माँ हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण बंधु हैं, कृष्ण भाई हैं, कृष्ण गुरु हैं, सब वे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। द्रौपदी जब विपत्ति में पड़ी थी तो सब लोग थे ही ना वहां, गुरु बैठे थे द्रोणाचार्य, दादा भीष्म बैठे थे, पति बैठे थे, कोई क्या कर सका। अंत में उसको कहना पड़ा गोविंद द्वारिका वासी, हे द्वारिका में रहने वाले गोविंद आप हमारी लाज रखिए। तो भगवान लाज रख लिए, और कौन कौन बड़े व्यक्ति नहीं थे उनके, द्रौपदी जी के पति ऐसे थे जो दिग्पालों को जीतने वाले थे, और अर्जुन जैसे पति, युधिष्ठिर जैसा पति, भीम जैसा पति, कुछ नहीं काम आए, वास्तव में किसी काम नहीं आएंगे। आदमी का केवल भ्रम है, भरोसा रखता है, भरोसा कृष्ण पर करना चाहिए। तो इस तरह से प्लान कर रहा है कौश, तय रहम सुर पक्षियन हत्वा भुक्षे महिम पान, मैं इन सब से मिलकर तय ही, अकेले नहीं हूं, मेरा बहुत बड़ा बलवान समाज है, इनसे मिलकर के और देवताओं के पक्ष में रहने वाले कौरवों और पांडवों, इन लोगों को भी लक्ष्य करके कह रहा है, इन सबको तो जरासंध आदि को तो मरवाऊंगा ही, पांडवों को, कौरवों को, धृतराष्ट्र आदि को, युधिष्ठिर आदि को, या दुर्योधन आदि को जो सब कृष्ण के संबंधी हैं, या जादवों के हितैषी हैं, या सूर्य का अर्थ है जादव, जो जादवों के पक्षधर है, विवाह आदि का संबंध किए हैं, उनको हेल्प करते हैं, इन सबका मैं वध कराऊंगा। तो कृपा करके हमारा ये काम आप पूरा कर दीजिए। एतद् ज्ञात्वा आनय क्षिप्रम, तीन बार आनय आनय कहा, यह जान करके क्षिप्रम शीघ्र ही उनको लाइए, राम कृष्ण यह अर्भक ये बच्चे हैं, उनको लाना आसान है, कोई भी प्रलोभन दिखा करके, खास करके जग उत्सव और मथुरापुरी की शोभा का वर्णन कीजिएगा, देखने लायक है, यहाँ का सब कुछ देखने लायक, शहर में एक से एक चीज आकर्षक होता है, देखने आएंगे, घूमने आएंगे, और आने पर मैं यहाँ उनका हनन करूंगा। अक्रूर जी अभी बैठे हैं सभा में, वो कुछ कहेंगे तो वो मैं बाद में बात करूंगी। सवेरे निकले हैं ब्रज के लिए, सवेरे निकले हैं, तो इनके निकलने पर दिन बीत गया, वो पूरा दिन भर चलते रहे, तब नंदगांव पहुंचे, उसके बीच में उसी दिन केसी का वध भगवान करेंगे और व्यवासी का, और नारद जी आकर के उनसे कहेंगे, जो कंस से कहे ऐसे ठीक उससे विपरीत भगवान से कहेंगे कि आपको परसों चलना है, मारना है कंस को, ऐसे करना है, ये करना है, इस तरह इस अध्याय अगले अध्याय में कथा है। हरे कृष्ण। Yeah,